ओम शांति। आज इस जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्घाटन सत्र है। हमारा टॉपिक है राइजिंग जूरिस्ट थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा न्यायविदों का उत्थान। आप सभी तो यही सोचते होंगे कि न्यायविदों का तो उत्थान हुआ ही है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिकता जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे अंदर की वैल्यूज बढ़ जाती हैं, हमारे अंदर आत्मा में शक्तियां आती हैं और हम और भी अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी डिफिकल्टीज होती है उनको सॉल्व करने की शक्ति आती है। वैसे तो हम न्यायविद सभी की डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, उन्हें अच्छा रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती हैं, उनको सॉल्व करने वाला और कोई नहीं होता है। और इसलिए हमें अपने आप को सशक्त बनाना है। जितनी आत्मा में अंदर शक्ति होगी उतना हमारा सशक्तिकरण होगा और उतना ही हम अपनी स्वयं की, औरों की, समाज की, देश की सभी समस्याओं का निदान कर सकेंगे, निराकरण कर सकेंगे। हम सभी न्यायविदों से यही सबकी अपेक्षा भी रहती है। जीवन में किसी को भी हम देखते हैं, कोई भी समस्या आती तो उनको लगता है कोई वकील को पूछना चाहिए, मिलेगा तो तुरंत पूछेंगे ऐसा ऐसा है तो क्या करें, क्योंकि लॉ का क्षेत्र ऐसा है सब जगह उसकी आवश्यकता है, हर चीज से लॉ जुड़े हुए हैं। सबके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, संस्था के अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, बायलॉज होते हैं, तो डे टू डे वर्क में भी सब जगह लॉ से सब लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो सबको गाइडेंस चाहिए होती है और ये गाइडेंस देने का काम हम करते हैं। तो ये आध्यात्मिकता की शक्ति जो है हमें मोटिवेट रखती है और आध्यात्मिकता हमें अंदर ले जाती है, अर्थात अंतर्मुखता की ओर ले जाती है। और इस अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में बैठकर जब हम किसी बात का चिंतन मंथन करते हैं तब हमें सूक्ष्मदर्शिता, आत्मदर्शिता से वस्तु स्थिति का सही आकलन होता है। आप सभी अध्यात्म प्रेमी हैं, इसलिए आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जूरिस्ट विंग, राजोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के जूरिस्ट विंग द्वारा तथा साथ साथ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स का जो फेडरेशन है सेंट्रल जोन का, उसके द्वारा जो संयुक्त रूप से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है, तो आप सभी को इसमें का बहुत आध्यात्मिक लाभ होगा, आप सभी का आध्यात्मिक सशक्तिकरण होगा। और इसी उद्देश्य से हमने ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। आप सभी को अवश्य ही यहाँ बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी संतुष्ट हैं? मैं एक बार पूछना चाहूंगी, आप अपना हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। आपको बहुत अच्छा प्राकृतिक वातावरण भी मिलेगा, साथ साथ आध्यात्मिक वातावरण भी मिलेगा। और डेफिनेटली आप जैसे कल आए या कोई आज भी आए हैं तो जाने के समय आप फील करेंगे कि आप में कितना परिवर्तन आया है। और ये जो परिवर्तन है वो सदाकाल का परिवर्तन करना है, इसी लक्ष्य से आप यहाँ पर जो भी बातें बताई जाएंगी वो ग्रहण करेंगे। तो हम अभी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मेहमानों को, स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस B.R. सड़ंगी जी, जज हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कटक। हम सभी तालियों से स्वागत करेंगे। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस V. ईश्वरिया जी, पेट्रन जूरिस्ट विंग। ऑनरेबल मिस्टर B.D. राठी, वाइस चेयरमैन जूरिस्ट विंग। राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी, चेयरपर्सन जूरिस्ट विंग। आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष ब्रिजमोहन भाई जी। आदरणीय लता दीदी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग। आदरणीय डॉक्टर B.K. रश्मि ओझा जी, आप सभी कत्तर गुरु से उनका स्वागत करेंगे। ब्रदर पंकज गिया जी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स पेयर्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स, भ्राता ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस पच्चापुरे जी, भ्राता संदीप अग्रवाल जी, आप सभी मेहमान आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा फिर से आप सभी से अनुरोध है, कृपया आगे आके बैठे, पीछे बैठे हुए भाई बहने कृपया आगे आके बैठे। आप सबको मैं ये बता दूं, ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है पीस ऑफ माइंड टीवी अवेकनिंग टीवी पर, इसलिए अगर आप आगे आके बैठते हैं तो आपका व्यू भी अच्छा जाएगा। तो फिर से निवेदन करती हूँ, कृपया आगे आकर बैठेंगे। हम यह कार्यक्रम शुरू करने से पहले परमात्मा की याद में बैठेंगे, स्मृति में बैठेंगे, अथवा आप जिस भी इष्ट को मानते हैं आप उनकी स्मृति में बैठेंगे और तत्पश्चात हम यह कार्यक्रम शुरू करेंगे। ओम शांति। हम सभी ने परमात्मा पिता का इस सभा में आवाहन किया जिससे कि हमारा ये कॉन्फ्रेंस सफल हो, जिस लक्ष्य से हम आए हैं वो हमारा उद्देश्य सफल हो। हमारी इस विंग को आगे बढ़ाने में बहुत लोगों का सहयोग रहा है। हमारे पूर्व चेयरमैन भ्राता बीएल महेश्वरी जी, उन्होंने नजदीक में ही 17 अप्रैल 2023 को अभी उन्होंने देहत्याग किया है, शरीर छोड़ के वो वैकुंठवासी हो गए। तो उनको हम 2 मिनट के लिए मौन श्रद्धांजलि देंगे। खड़े हो जाइए सभी। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम स्टेज पर जो हमारे महानुभाव उपस्थित हैं उन सभी का स्वागत करेंगे। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मेहमानों का बाजस द्वारा, प्लांट्स द्वारा, साफा पहना के तथा अंग वस्त्र द्वारा स्वागत करेंगे और हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते रहेंगे। नंबर अब्दुल मस्त जस्टिस बेडी सारंगी थी। वैसे भी कहा जाता है कि हर एक को एक एक वृक्ष लगाना चाहिए जिससे कि हमारा पर्यावरण बहुत शुद्ध रहेगा, इसलिए हम प्लांट्स द्वारा भी स्वागत कर रहे हैं। और मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी भी एक यहाँ से जाने के पश्चात एक एक प्लांट अपने अपने घरों में अवश्य लगाएं, जिससे कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकें और उसमें वृद्धि कर सकें। अभी स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटी कुमारी को आमंत्रित करती हूँ। वो डांस द्वारा, एक दिव्य डांस द्वारा हम सभी का स्वागत करेंगी। स्वागत करते हैं दिल से, इस गीत के उद्गार हैं। Swagatam,
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका,
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार,
आए है दिल का
था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका,
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार,
आए है दिल का
था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका,
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद छोटी सी कुमारी ने अपने दिल के भावों से आप सभी का स्वागत किया, नृत्य द्वारा स्वागत किया। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मधुरवाणी ग्रुप को। आप सबने कल भी सुना हमारे सतीश भाई कैसे अपने आप गीत बनाते हैं, म्यूजिक देते हैं, तो मधुरवाणी ग्रुप आज थीम सॉन्ग, आज का जो टॉपिक है हमारा राइजिंग जूरिस्ट थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, उसके ऊपर थीम सॉन्ग बनाया है, उसे प्रस्तुत करेंगे मधुरवाणी ग्रुप।
फिर सजा है ज्ञान सरोवर, फिर सजा है ज्ञान सरोवर, दिव्य न्याय दरबार, न्याय के मंदिर में न्याय के देवों का स्वागत है, सत्कार अभिनंदन बारंबार। एक बार फिर से आप तालियां बजा के अपना अभिनंदन स्वीकार करें।
अध्यात्म सशक्तिकरण से ही होना सबका उत्थान है। अध्यात्म सशक्तिकरण से ही होना सबका उत्थान है। ओ प्यारे न्याय विदो, दिल से स्वागत सम्मान है। ओ प्यारे न्याय विदो, दिल से स्वागत सम्मान है। इस आध्यात्मिकता के द्वारा एकाग्रता आ जाती है, मन का विवेक जग जाता है, निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। इस आध्यात्मिकता के द्वारा एकाग्रता आ जाती है, मन का विवेक बढ़ जाता है, निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। आत्मा में शक्ति भरता राजयोग ध्यान है। ओ प्यारे न्याय विदो, दिल से स्वागत सम्मान है। ओ प्यारे न्याय विदो, दिल से स्वागत सम्मान है। आध्यात्मिकता के रंग में जो न्यायपालिका रंग जाए, सच कहते सूरत समाज की स्वर्ग से सुंदर बन जाए। आध्यात्मिकता के रंग में जो न्यायपालिका रंग जाए, सच कहते सूरत समाज की स्वर्ग से सुंदर बन जाए। स्वप्न वही साकार कर रहा फिर भगवान है। ओ प्यारे न्याय विदो, दिल से स्वागत सम्मान है। ओ प्यारे न्याय विदो, दिल से स्वागत सम्मान है। सकारात्मक परिवर्तन से विश्व बदलने वाले हम, कथनी करनी एक हमारी कर दिखलाने वाले हम। सकारात्मक परिवर्तन से विश्व बदलने वाले हम, कथनी करनी एक हमारी कर दिखलाने वाले हम। अध्यात्म नैतिक मूल्यों में सबका कल्याण है। ओ प्यारे न्याय विदो, दिल से स्वागत सम्मान है। ओ प्यारे न्याय विदो, दिल से स्वागत सम्मान है। दिल से स्वागत सम्मान है। दिल से स्वागत सम्मान है। दिल से स्वागत सम्मान है।
बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का। जो थीम सॉन्ग है वो थीम सॉन्ग भी था, उसमें स्वागत भी किया, और हमें उसमें क्या क्या करना है ये भी आपने हमें बताया कि सकारात्मक परिवर्तन हमारे अंदर लाना है, नैतिक मूल्य की बढ़ोतरी करनी है, और कथनी करनी एक करके हमें आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों से अपना और विश्व का कल्याण करना है। बहुत सुंदर संदेश दिया मधुरवाणी ग्रुप ने हमें। अभी स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राज्योगिनी लता दीदी जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पिछले 30 वर्षों से माउंट आबू में रहते हैं, लीगल डिपार्टमेंट है ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, उसकी आप हेड हैं, इंचार्ज हैं, और हमारे जो भी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसको बहुत भली भांति आप ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी भी आपने ही सब किया है, सभी के सहयोग से किया है अर्थात। तो आपका आध्यात्मिक बैकग्राउंड रहा है बचपन से ही, और यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो भी केसेस होते हैं आप हैंडल करते हैं, कॉन्फ्रेंस जूरिस्ट विंग को भी बहुत अच्छे से संभालते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना वेलकम स्पीच डिलीवर करें। आदरणीय लता दीदी।
ओम शांति। सभी सुन रहे हैं, अभी बोलेंगे 3 बार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। हमेशा कहा जाता है मेहमान हिंदू संस्कृति में तो विशेष के भगवान होता है। मैं यहां आप सबको मेहमान संबोधित नहीं करूंगी, आप सब भी परमात्मा के बच्चे हैं। कल ही मैंने बताया कि बाप का और बच्चों का हमारा परमात्मा के साथ संबंध होने के नाते ये आपका भी घर है। बाप का घर सो बच्चों का घर, तो आपका अपने घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज विशेष, पहले तो परमपिता परमात्मा जिसके साथ हम सभी संबंध स्थापन कर सकते हैं। मैं जूरिस्ट के प्रोग्राम में कहती हूं कि वो हमारा सुप्रीम जस्टिस है। कहा भी जाता है कि सारे निर्णय हमारे कर्मों का लेखा जोखा परमात्मा के पास होता ही है। हम चाहे उसे माने ना माने, हमने चाहे वो हमारे कर्मों के तरफ देखा हो या ना देखा हो, हम सोचें किसी ने मुझे नहीं देखा, मैंने किया तो क्या हुआ, मगर अगर हम संकल्प में भी कुछ सोचते हैं तो भी वो हमारे कर्मों के हिसाब में लिखा जाता है। और इतना परमात्मा के पास जो भी कहो इंस्ट्रूमेंट है, हम अगर स्वप्न में भी कुछ करते हैं तो वो भी उस हिसाब में आ जाता है। तो ऐसा सुप्रीम जस्टिस है जो अंत में न्याय करते समय हमारे बीच में, हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी पधारे हैं, हम जोरदार तालियों से हमारे ब्रिजमोहन भाई जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और बहनें हमारी आए भाई साहब को अभी नहीं, बस बिंदु एक ही चीज कर लेंगे, बिंदु तालियां बजती रहे भाई साहब के स्वागत में। हमारे बहुत सीनियर मोस्ट भाई साहब हैं, यज्ञ के स्थापना से आप जुड़े हुए हैं संस्था से, और हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं आप सब में एडमिनिस्टर मैनेजमेंट कमिटी के अंदर पोस्टधारी हैं। तो भाई ऐसे हमारे राजयोगी आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी आर सारंगी जी, जज हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कटक, उनका भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपने विशेष समय निकाल के कल पूरी ट्रेवलिंग करके कल रात को हमारे बीच यहाँ पहुँच चुके थे, और आज सुबह वह हमारे साथ सुबह के सेशन से हैं। आपने शिविर सेशन भी अटेंड किया और अभी भी हमारे साथ यहाँ विराजमान हैं, तो मैं उनका विशेष दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पहले भी कटक में कॉन्फ्रेंसेस में उनके साथ मिले हैं, साथ में ऐसे ही स्टेज पे बैठे हुए थे। बहुत ही आध्यात्मिक हैं और बहुत ऑनेस्ट हैं और बहुत सिंसियर हैं ऐसे, और हसमुख हैं, वेरी हसमुख। तो ऐसे भाई साहब का दिल से स्वागत है। हमारे बीच में हमारी राजयोगिनी बी के पुष्पा देवी, जो जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन हैं, और विशेष दिल्ली से आपकी इन सारी कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए 4 दिन पहले से यहाँ आकर सारे कॉन्फ्रेंस की गाइडेंस कर रही हैं, क्योंकि उनके ही गाइडेंस के अनुसार कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो हमारी ऐसी आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा दीदी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हमारे बीच में हमारे हमारे ऑनरेबल जस्टिस बीडी राठी जी, जो वाइस चेयरपर्सन हैं, आप भी 2 दिन पहले से यहाँ आ चुके हैं और समय समय पर फोन पे हमने उनको काफी परेशान किया, पूछते रहे ये करें ऐसे करें, कौन आ रहा है, किसको कहाँ रखना है। तो हर समय आपका गाइडेंस हमें मिलता रहा। तो ऐसे भाई साहब का भी, आप भी इंदौर से हमारे बीच में पधारे हैं, तो मैं दिल से भाई साहब का भी स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में ऑनरेबल जस्टिस वी ईश्वरिया, जो जूरिस्ट विंग के पैट्रन भी हैं और साथ साथ में आप एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश भी रिटायर हुए हैं, उसके बाद चेयरपर्सन भी रहे हैं। इस तरह आप खुद भी विशेष हैदराबाद से जर्नी करके हमारे बीच में पधारे हैं। आप भी बहुत जूरिस्ट विंग के लिए मदद करते हैं, साथ साथ इंस्टीट्यूशन के लीगल जो भी आता है प्रॉब्लम, उसमें भी आपकी हमेशा मदद मिलती है। हम इनसे ही गाइडेंस लेते हैं कि भाई साहब ऐसी केस आई है, इसमें क्या करें, क्या ना लिखें, क्या लिखें, तो आपकी गाइडेंस हमें बहुत मिलती रहती है। तो भाई साहब का भी बहुत 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 स्वागत है। हमारे बीच में नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर ब्रदर पंकज घई, आप भी ऑल द वे बॉम्बे से ट्रेवल करके हमारे बीच में यहाँ आए हैं, और टैक्स एसोसिएशन बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस सारे साल में होल्ड करते रहते हैं। बहुत ही ज्यादा बिजी होते हुए भी आपने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया और इस कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड कर रहे हैं, आपका भी बहुत 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 स्वागत है। हमारे बीच में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए एस पाश्चापुरे जी भी उपस्थित हैं। आप भी कर्नाटक हाईकोर्ट से रिटायर हुए हैं और इस संस्था से जुड़े हुए हैं। ये जितने भी हमारे तीनों जजेस जो रिटायर्ड हैं, ये जब सीट पे थे तब से, बल्कि मैं कहूंगी जब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे और लोअर जुडिशियरी में थे, तब से ही इस संस्था से जुड़े हुए हैं और तभी से राजयोग का प्रैक्टिस करते हुए सुचारू रूप से उन्होंने अपनी जस्टिस की पोस्ट भी संभालते हुए बहुत ही सुंदर रीति से जजमेंट्स दिए हैं। तो ऐसे सारे जजेस का भी हम फिर से जोरदार तालियों द्वारा स्वागत करते हैं। हमारे बीच में ब्रदर संदीप अग्रवाल, जो एडवोकेट हैं, चेयरपर्सन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर सेंट्रल जोन के आप चेयरपर्सन हैं, आप भी इस संस्था से 7-8 साल से जुड़े हुए हैं और हमेशा दिल में यही रहती है कि कैसे मैं ये सेवा करूं और परमात्मा का मैसेज एक एक तक पहुंचाऊं। जब उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना तो इन्होंने ही साथ में ज्वाइन किया। आप देखेंगे इसमें भी नाम लिखा हुआ है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर, और इन्होंने अभी यहाँ पे 45-50 टैक्स प्रैक्टिशनर्स को लाया है। हमारे बीच में सब बैठे हैं और इस तरह से इनका भी जो इन्होंने मेहनत की है, कई बार आना जाना किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए और इस तरह से ये कॉन्फ्रेंस सभी के सहयोग से सुचारू रूप से जो आप देख रहे हैं, तो इनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे बीच में हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बी के रश्मि ओझा, आप मुंबई से आई हैं, आप मुंबई यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर और उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी हुई हैं बॉम्बे में। आप पहले एडवोकेट भी रह चुकी हैं और कम से कम 25 साल से आप इस संस्था से जुड़ी हुई हैं और अपनी सेवाएं जूरिस्ट विंग में निरंतर देती ही रहती हैं। जो भी हमें कार्य होता है तो जैसे हमने कहा कि हम सलाह लेते ही रहते हैं, तो इनसे भी हम सलाह लेते रहते हैं किसी केस के अंदर और ये हमें सलाह देती रहती हैं। तो रश्मि ओझा का भी दिल से स्वागत है, स्वागत है। आज हमारे बीच में छोटी सी नन्ही सी बालिका ने डांस किया, मैं उसका भी दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारे मधुरवाणी ग्रुप के भाइयों ने इतना सुंदर वेलकम सॉन्ग प्रस्तुत किया, तो मैं उनका भी दिल से वेलकम करती हूँ। और जो आज की सेरेमनी की मास्टर है हमारी श्रद्धा बहन, जो हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है जूरिस्ट विंग की और बहुत ही ज्यादा अथक मेहनत करती रहती है, सारा डेली प्रोग्राम्स बनाना, सब कुछ टाइम टू टाइम पे करके देना और ये सुचारू रूप से हम कॉन्फ्रेंस चला सके, पूरा कंप्यूटर संभालना, अकोमोडेशन का सारा देखना, गेस्टों को प्रॉपरली अटेंड करना, सब कार्य करते हुए भी एकदम निर्माण और हसमुख रहती है। ऐसी अथक सेवाधारी हमारी श्रद्धा का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। नॉट द लीस्ट बट द फर्स्ट, पहले भी मैंने किया, अभी फिर से मैं कर रही हूँ। आप सभी के बिना ये कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं सकती थी, है? हो सकती थी, फिर हम ना यहाँ होते, क्योंकि आप ही ना होंगे तो हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे। इसीलिए आप सब भी अनेक स्थानों से, पूरे भारत वर्ष से 2-3 दिन की ट्रैवलिंग कर करके यहाँ पहुँचे हैं, तो आपकी ये आध्यात्मिक रुचि देखकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि क्योंकि वो कहा जाता है कड़ी से कड़ी जोड़ते चलो एक पूरा घेरा तैयार हो जाएगा, और ये भारत स्वर्ग बना हुआ था, बना हुआ है और बन ही जाएगा। तो ऐसे आप सब के यहाँ पर आने पर आप सभी का भी दिल से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे पर्दे के पीछे भी बहुत भाई बहनें काम कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, आपको ट्रांसपोर्ट विंग, ट्रांसपोर्ट से लाने वाले, अकोमोडेशन देने वाले, उसके बाद भोजन वाले, उसके बाद ये माइक आदि सब, लाइट, स्टेज, हा? तो इस तरह से एक एक भाई बहनों का दिल से स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। ओम शांति।
हम सभी का स्वागत करने वाली आदरणीय लता दीदी जी का भी हम बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मैं उनके साथ में मुझे सेवा करने का मौका मिला है, और आप जिस तरह से आप निर्माणों के कार्य करते हैं, आपके गाइडेंस में ही मैं सारा कार्य करती हूँ, तो आदरणीय दीदी जी का भी फिर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम कार्यक्रम को अभी आगे बढ़ाते हुए आज अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय डॉक्टर रश्मि ओझा बहन जी को कि आकर इस कॉन्फ्रेंस का एम और ऑब्जेक्ट क्या है उसके लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, डॉक्टर रश्मि ओझा जी का उनके बारे में बताना है तो बहुत समय लग जाएगा क्योंकि वो विविधता से भरी हुई है। उनको कई सारे गोल्ड मेडल्स प्राप्त हुए हैं और आप इस विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर है। ह्यूमन राइट्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, आपने ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर इनइक्वालिटी इस सब्जेक्ट में पीएचडी किया था। आप फॉर्मर हेड एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मुंबई यूनिवर्सिटी के रहे हैं, अभी भी छागला चेयर के चेयरमैन हैं और देश विदेश में कई बार इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और पेपर प्रेजेंटेशन किया है, उसमें भी आप हमेशा फर्स्ट आई है। तो ऐसी आदरणीय डॉक्टर रश्मि ओझा बहन जी का मैं अनुरोध करती हूँ कि आप आकर आज के कॉन्फ्रेंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताएं। डॉक्टर रश्मि ओझा जी,
सॉरी मैं फिर से बीच में आ गई, एक चीज बतानी थी जो रह गई थी। मुझे बहुत हर्ष है आज कि जूरिस्ट विंग की पूरी मैनेजमेंट कमिटी आज हमारी स्टेज पर है। हमारी चेयरपर्सन पुष्पा दीदी जी, वाइस चेयरपर्सन बीडी राठी जी, हमारे पैट्रन्स जस्टिस ईश्वरिया, जस्टिस पाश्चापुरे, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स माई सेल्फ रश्मि ओझा एंड टू नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, वन इज नाथमल भाई एंड वन इज विद्या बहन एंड दी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर श्रद्धा बहन। द होल ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी इज प्रेजेंट टूडे अमंग यू ऑल। ओम शांति।
ओम शांति। ज्ञान दया प्रेम के सागर परमपिता शिव परमात्मा, ऑनरेबल जस्टिस सारंगी सर, मोस्ट रिवियर्ड ब्रदर ब्रिजमोहन भाई जी, ऑनरेबल थ्री पेट्रन मेंबर्स जस्टिस बीडी राठी सर, जस्टिस ईश्वरैया सर, जस्टिस पाशापुरे सर, आर चेयरपर्सन पुष्पा दीदी जी, अवर सीनियर प्रोमिनेंट टू पर्सनैलिटीज लता बहन जी एंड श्रद्धा बहन जी, आर टू टैक्स प्रैक्टिशनर ब्रदर्स, एस्टीम्ड पार्टिसिपेंट्स एट दिस कॉन्फ्रेंस सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ओम शांति एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। The aims and objects of this conference, you can see the theme of this conference, Rising Jurists through Spiritual Empowerment. तो ये आध्यात्मिक उन्नति क्या है? What is spiritual empowerment? And how does it relate to jurist? Would jurists need spiritual empowerment? Can there be any nexus between spiritual empowerment and the worldly laws? I think ये सारे प्रश्न it ponders in the minds of most of us, and therefore how are we going to reply this? किसी एक पत्रकार ने एक सक्सेसफुल जज से पूछा, सर आई विश टू आस्क यू अ क्वेश्चन, वॉट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? वेल, गुड जजमेंट्स, रिप्लाइड द जज। The reporter asked another question, what is the secret behind good judgments? Well, experience, replied the judge. The reporter exasperated and said, sir, ek last prashna puchna chahta hu, what is the secret behind your experience? Bad decisions, the judge replied. Indeed, a most apt example of a spiritually empowered mind. And another true incident which just happened a few years back, and I cite it wherever I have been invited, on a spiritually empowered mind, is the case which was decided in late 70s, famously known as the emergency case, the habeas corpus case, the case of blow of civil liberties, which was decided by the majority of judges, ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla. The case is more significant when we are discussing spiritual empowerment of mind, because it was on the 16th of September 2011, about 35 years after that judgment was delivered. The senior most judge, former Justice P.N. Bhagwati, called for a press meeting all of a sudden after his retirement. And he said that before my demise, I want to make an open statement. Aur unhone kaha ki meri puri life mein as a judge, the blatant error that I have made in the judgment was the habeas corpus case, where I made the blatant error of my life as a judge. He was subsequently elevated as the Chief Justice of India. Aur wo keh rahe the ki agar aaj wahi bench baithegi and if we have to rewrite that judgment, to mera support dissenting judge ke saath hoga, Justice H.R. Khanna, who was the sole dissenting judge. But it is only a spiritually empowered mind who can just make this open confession. The one who was the Chief Justice of India, having called a meeting 35 years after the judgment. Just 6 saal pehle hi unhone shareer chhod diya and he passed away. I am sure his soul may not have carried any regrets about the error he committed, because he openly confessed that that was the blatant error he committed. Identically, when we speak of spiritually empowered mind, I think we, through the jurist wing, which is one of the 20 wings, a very prominent wing with very prominent guides that we have, the mentors that we have, it's doing a yeoman service by conducting seminars, symposias, conference, campaigns, retreats bhi karte hai, alag alag theme pe, ki hum kaise interconnectedness, jaise Ben ji ne kaha ki whether there is, you know, how do we balance between love and law. Hamara sara aim yahi rehta hai ki we bring, you know, people together and teach them how to bring a balance between the two. It will not be out of place to state, yahan kahi sare judges hai, honorable hamare vice chancellor sir bhi hai, Mishra sir bhi hai, and it will not be out of place to state ki National Judicial Academy, jahan periodical regular judges ki training hoti hai, wahan par bhi human values, spiritual values, syllabus ka ek component hai jo sikhaya jata hai. The University Grants Commission ne bhi filhal mandatory kiya hai ki sare curriculum mein jo colleges mein padhaye jate hai, vidyapeeth ya universities mein padhaye jate hai, usme human values ka component hona chahiye. Jo CDC report hai, curriculum development report center report jo hai, usme hamare Brahma Kumaris ki spiritual values, क्यों लॉ में पढ़ानी, उसके साथ साथ पढ़ाना चाहिए या इट शुड बी केप्ट एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, वो भी कहा गया है. लेकिन मुझे फिर भी याद आता है कि 1958 में जब भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 1958 में रिपोर्ट दी थी एंड इट वॉज चेयर्ड बाय जस्टिस सेतलवाड़, उसमें बहुत ही एक क्रिटिकल रिमार्क उन्होंने लिखी थी लॉ कमीशन रिपोर्ट में. और उन्होंने कहा था कि देर आर प्लेथोरा ऑफ LLBs, बहुत सारे लोगों को LLBs की डिग्री मिल जाती है, हु आर हाफ बेक्ड लॉयर्स. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ बेक्ड लॉयर्स. एंड व्हेन आस्क्ड टू देम दैट व्हाट वर द सब्जेक्ट्स यू स्टडीड, दे वुडंट रिमेम्बर. What are the elements of law? They wouldn't remember that. And very easily they would say that at the last moment they crammed the notes and they passed out the examination. These half-baked lawyers are let loose in the society as parasites in different parts of the country. The situation is so apt even today, because when we speak of legal education, legal profession, justice administration of justice, I think we come across various criticisms, and therefore the aim and object of this conference is how do we imbibe these values within the jurists, which will help them function in a better way, in a way which will surely, you know, meet the requirements of imparting justice to the people as such. So far as the aims and objects of the conference are concerned, very precisely I will summarize in what Rabindranath Tagoreji had to say, that where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world is not broken into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by Thee, that is the Supreme, in ever-expanding scope or horizon of thought and action. It is in that heaven of freedom, my Father, let my country awake. It's in that heaven of freedom, my Father, let my country awake. And that is what we aim at by conducting this conference. Thank you and Om Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि ओझा जी, और आपने बहुत अच्छे से बताया है हमें कि एम्स एंड ऑब्जेक्ट इस कॉन्फ्रेंस के क्या है। आप समझ में गए होंगे और आशा करती हूँ आप इसे अकॉर्डिंग ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, अपने जीवन में वो मूल्य लाएंगे और अपना जीवन और भी आध्यात्मिक रूप से सशक्त सुदृढ़ करेंगे। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे पेट्रन, जूरिस्ट विंग के पेट्रन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी ईश्वरिया जी। आप आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं और आप नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन रह चुके हैं। अभी भी आप कई सारी गतिविधियों में एक्टिव हैं और इतने निर्माण हैं, इतने हसमुख हैं, बहुत सीधे, जैसे छोटे बच्चे इनोसेंट होते हैं वैसे ही हमारे भाई साहब हैं। आपका कभी अगर भाई साहब से इंटरेक्शन हुआ तो आपको पता चलेगा कि कितने इनोसेंट हैं, अर्थात आध्यात्मिकता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है और उसी का रिफ्लेक्शन उनके व्यवहार में हमें दिखाई देता है। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मैं आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी ईश्वरिया जी।
ओम शांति। एक बार सब भाई बहने बोले ओम शांति। आज की चेयरपर्सन राजयोगी ब्रह्म कुमार ब्रिजमोहन भाई जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्म कुमार इज माउंट आबू, द चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज फंक्शन ऑनरेबल जस्टिस बी आर सारंगी जी, जज हाई कोर्ट ऑफ ओरिसा एट कटक, एंड माय डियर जी ब्रदर्स हु आर आल्सो पैट्रन्स ऑफ द जूरिस्ट विंग, ऑनरेबल जस्टिस बी डी राठी जी, ऑनरेबल जस्टिस पचापुरे जी, एंड द चेयरपर्सन ऑफ द जूरिस्ट विंग ब्रह्म कुमारी पुष्पा दीदी। क्योंकि जूरिस्ट विंग जब फॉर्म हुआ, फर्स्ट चेयरपर्सन वाज the B.K. Ramesh and Shah. He was for a long time and till his demise. Thereafter B.K. B.L. Maheshwari was there, a senior advocate, Bar Council chairman of Rajasthan also. Then now the Pushpa Didi. Pushpa Didi is our spiritual sister and mujhe our physical sister bhi dikhta hai. महसूस होता है क्योंकि दी ब्रह्म कुमारी इज हेडेड बाय दी वुमेन। दिस इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज हेडेड बाय दी वुमेन ओनली, देयरफॉर वुमेन एम्पावरमेंट द मात्र शक्ति जो शिव शक्तियों का यहां पावर दिखता है, महसूस होता है। उस वास्ते मैं बी के पुष्पा दीदी को बधाई देता हूं क्योंकि राइटली हेडिंग देन वाइस चेयरपर्सन नाउ बी डी राठी जी एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर बी के लता जी BK Rashmi Hojaji, BK Vijayadidi, now recently now announced Mr. Natmal Bahiji, and the headquarters coordinator Shaddaji, and the guest of honor of today, the brother the Sarang, the Sandeep Agarwal, and other dignitaries occupied on the dais and off the dais, the honorable judges, then deputy commissioners, law enforcement agencies, jurists, brothers and sisters. The subject of this session is, and the whole of the theme of the thing is rising jurists through the spiritual empowerment. Just now we have seen the song sung by the Madhuravani and that little sister also. Madhuravani, we are governed by the Constitution of India. Constitution of India, object of the Constitution of India is to give social justice, is to bring equality, justice, fraternity, freedom, liberty. Why is the Constitution ka jarurat kya tha? That means whether the world was in unorganized or in a chaos state, whether we have our own constitution to bring back that kind of the egalitarian society where the justice, equality, good conscience prevails. And the main function of, the state is, state means the three wings, legislature, executive and the judiciary. Legislature makes the law and it is administered by the administration. And the judiciary, function of the judiciary is whether the law made by is as per the constitution or not, they will have an administrative review and they will set aside, and they will set aside the even quasi the law made by also. Whether the administrators are administering their functions as per the law prevailing in the country, so that is reviewed by the judiciary. Therefore, the functions of the judiciary is to set right the legislature and the administration, apart from that doing social justice. Social justice is the main function of the judiciary. Then how do we bring back the social justice through the judiciary is the main question. Therefore, the jurists have to be empowered. Jo adhyatmika shakti dwara, jurists will be empowered so that they will enforce the law without fear or favor, as Sister Rashmi Oja said, what the Rabindranath Tagore composed in a poem. Aisa jo constitution ke shabat leta hai, High Court judges, and the subordinate judiciary also, ye administer karne ke vaste shakti aaj nahi bol sakta hai. Kyun nahi bol sakta hai? Because they are having lack of the spiritual empowerment. Because we doesn't know, the body means we see only the physical body consisting of so much of the education, then wealth, bodily relations, post position, then everything. But that is not correct. As a matter of fact, all of us know, body is different from the soul. Prana is alag. Jo material body is different from immaterial consciousness. Immaterial consciousness is a metaphysical entity, which is a point of light, which is energy. That energy we do not know. But we are seeing, we are speaking, we are thinking, feeling that the body, mind is doing this. But it is not correct. We are under the ignorance. Because as a matter of fact, soul is seeing through the eyes. Soul is thinking through the mind. Soul is taking the decision. The soul only, but totally we have forgotten the soul. The consciousness, the prana, the atman, energy, spirit, totally we have forgotten. Therefore, now we have to do the practice to bring back that consciousness. Once we bring back that consciousness, if we empower ourselves increases the discharged soul into a charged soul, then justice, equality, fraternity, humanity, we don't tend to commit any mistake, any crime, any unrighteousness. Nothing we can do it, because we know the karmic account of our actions. Therefore we don't do, because as this birth is nothing but true reflection of the previous deeds and things. We don't want to degrade ourselves in the next birth or take a birth in a heinous way. Therefore we would like to be elevated ourselves, earn something which is invisible. Therefore the soul is invisible, indestructible, eternal, that is real, but it is very easy and very difficult also. A long standing practice is required to lead a joyful, a peaceful, an empowered and a blissful life. That is possible if we practice. All of you have been given a practical meditation, a small book. I request you kindly read at least 3 to 7 times and practice it. Every word it is there, you practice it. Then Raja Yoga Shibir also there. So I request the newcomers and regularly attend the Raja Yoga session, so that you will empower yourself and you will really experience what the advocates want, judges want. So we should be able to understand very quickly, then have the power of discrimination, decide, tolerate, accommodate and patience, then cooperate. So all 8 powers we require. So all 8 powers we will get it. Therefore we will never come under the stress and strain. Chinta, gam, aur vichar, aur apne kya hota pata hi nahi rehta. सुबह जितना फ्रेश रहता, शाम में भी उतना फ्रेश रहता, जितने भी काम करे, बिकॉज सोल इज डूइंग. इफ वी आर थिंकिंग दैट बॉडी इज डूइंग, देन वील गेट अंडर द लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. देयरफॉर अर्निंग इज नॉट मनी, बट अर्निंग इज पीस एंड हैप्पीनेस. द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक बैक टू हिज हाउस विथ अ प्लेजेंट फेस, विथ अ पीसफुल माइंड, विथ द एटलीस्ट यू विल वेन यू गो एंड show your face to your better off your children. Let them not feel that his mood is not good and is very stressful. Therefore, that is the earning we have to earn and take back to the house at the end of the day. Therefore, you are very lucky to come here and to empower yourselves. Thank you thank you for all of you. Best of luck. Om Shanti.
Bahut bahut dhanyavaad. ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी ईश्वर्या जी, अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी जी. आप इस जूरिस्ट विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं. आप पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं. आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं और बहुत ही यूं कह के जिंदा दिल इंसान है. बहुत हंसमुख रहते हैं, हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं. कभी भी उनके चेहरे पे कभी कोई शिकन नहीं दिखेगी. हमारा रोज का अनुभव है, जो भी सेवाएं होती है, कभी भी फोन करेंगे तो इमीडिएट रिप्लाई दे देते हैं कि ऐसा नहीं, बहनों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. तो हमारे पीछे एक जैसे बैकबोन बनकर आप खड़े हैं. आपका जितनी महिमा करे कम ही है. तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी को कि आप आए और अपने वर्ड्स ऑफ विजडम शेयर करेंगे.
ओम शांति. जैसे कि आप सभी को बताया, पुष्पा दीदी के नेतृत्व में ये सबसे पहली कॉन्फ्रेंस उनके चेयरपर्सन बनने के बाद हो रही है. तो हम जोरदार कल्तर ध्वनि से उनका सम्मान करते हुए उनका ही अनाउंस किया. तो बहनों से निवेदन करूंगी कि ब्रिजमोहन भाई को शॉल दें. ब्रिजमोहन भाई दीदी का एज ए चेयरपर्सन ऑफ दिस विंग
सभी के सम्मुख सम्मान सहित उनको सीट पे बिठाएं। चलो ना जल्दी जल्दी, इतना टाइम लग रही है, कब से अनाउंस हो रही है। साथ साथ में हमारे जस्टिस बीडी राठी जी को भी अभी अभी ही वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया है, तो मैं ब्रिजमोहन भाई से निवेदन करूंगी कि बीडी राठी जी को भी सम्मानित करें। हमारे नाथमल भाई को भी अभी अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर कल ही भाई साहब ने नियुक्त किया है, तो मैं नाथमल भाई को भी सम्मान करवाऊंगी भाई साहब से। आप भी स्टेज पर आए नाथमल भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर से जोरदार तालियों के सहित हमारे तीनों ही मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों का बहुत बहुत अभिवादन।
ओम शांति। सर्वशक्तिवान परमात्मा, मीठे प्यारे बाबा की इस महासभा में विराजमान आप सभी मेरा अनन्य आत्मीयजन भाइयों बहनों, आप सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आज की मंच की शोभा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आदरणीय भाई साहब ब्रजमोहन जी, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पर अपना अमूल्य समय देकर हमारा आग्रह स्वीकार किया और मंच की शोभा बढ़ाई। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस सारंगी साहब, बहुत हंसमुख मिजाज, मैं समझता हूँ मेरा दूसरा मौका है उनके साथ स्टेज शेयर करने का। आपका बहुत बहुत स्वागत ऑनरेबल जस्टिस ईश्वरैया जी, ऑनरेबल जस्टिस पाचापुरे साहब, चेयरमैन पुष्पा बहन, बीके पुष्पा बहन, रश्मि बहन, लता बहन, श्रद्धा बहन, संदीप जी अग्रवाल और घिया साहब, हमारे सामने बैठे कई डिग्निटरीज जिनमें जस्टिस बीपी दास साहब कल आपके सामने मुखातिब थे, वो वाइस चांसलर मिश्रा साहब आज ही बधा रहे हैं, नथमल भाई और आप सभी, बहुत बहुत सबका अभिनंदन। आज का विषय बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्रासंगिक और रिलेवेंट, न्यायविदों का उदय। इसको थोड़ा हम सरलीकरण करके पढ़ें तो ये भी कह सकते हैं न्यायविदों का उत्थान, और सरलीकरण करें तो कह सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द जुरिस्ट। क्योंकि किसी न्यायविद का उदय या उत्थान उसकी पर्सनालिटी से ही समझ में आता है, तो हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे हो और विधा उसकी आध्यात्मिकता हो वो किस प्रकार की हो, मैं कुछ विचार जो परमात्मा ने मुझे दिए हैं, मेरा अपना कोई विचार आपके सामने नहीं है, उस बाबा की कृपा है जिसने ये थॉट्स मुझे मुरली के माध्यम से दिए, आप तक मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने अपने वेकेशन का इतना अमूल्य समय आप चाहते तो परिवार के साथ घूमने भी जा सकते थे, परंतु विश्व कल्याण के निमित्त, समाज कल्याण के निमित्त, स्वयं के उत्थान के निमित्त देकर यहां जो पधारे और इतना गहन और सुंदर चिंतन शुरू किया, उसके लिए हम और हमारी जुरिस्टिंग आभारी है आपकी। एक निवेदन करना चाहूंगा कि जितने कार्यक्रम आयोजित ऑर्गेनाइज किए गए हैं, कृपया कोई भी कार्यक्रम मिस न करें। हर कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्पेशल स्पेशल थॉट्स मिलेंगे जो जीवन में बहुत काम आएंगे। हमारे जुरिस्ट पर्सन्स का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो और उसकी आवश्यकता क्या है? आंतरिक शक्तियों का जागरण, हम में जो असीमित ऊर्जा परमात्मा ने दी है, बीइंग ए मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, उसकी जागृति कैसे हो, उसी से ही हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। पर्सनालिटी शब्द इतना विस्तृत है कि न केवल हमारी आंतरिक शक्तियां अपितु हमारा शरीर, हमारा सौंदर्य, हमारी क्वालिटीज, हमारी आर्ट ऑफ लिविंग, हमारा प्रत्येक कर्म, हमारी विचारधारा, हमारा मन, आनंद, सुख, ऐश्वर्य, धन, संपदा, सब कुछ इंक्लूड है हमारी पर्सनालिटी में। इतना वाइड और विस्तृत परिभाषा है पर्सनालिटी की। परमात्मा ने हम न्यायविदों को, न्यायविदों से तात्पर्य केवल न्यायाधीश से नहीं अपितु इस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए प्रत्येक ह्यूमन बीइंग के लिए एक विशेष शक्ति दी है, एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति से परखने और निर्णय करने की शक्ति जनरेट होती है, बुद्धि स्थिर होती है, और इसी कारण हम अपना न्यायदान का कार्य कर सकते हैं, करवा सकते हैं। समाज की बहुत बड़ी सेवा है। स्थिर चित्त रहना, स्थिर बुद्धि रहना, जो व्यक्ति जितना स्थिर चित्त और स्थिर बुद्धि का है वो उतना ही विवेकवान और समाज में अग्रगण्य, अग्रिम पंक्ति में बैठने वाला माना जाता है। हम वो महान आत्माएं हैं जिसे परमात्मा ने यह विशेष पाठ, चाहे एडवोकेट हो चाहे जजेस हो, दिया है, जो सबसे वंडरफुल पार्ट है, क्योंकि हमारा हर कर्म, हमारा हर सोच, हमारी हर विचारधारा, हमारी हर दृष्टि, वृत्ति, कृति हर समाज जन को प्रभावित करती है। यदि हमारे श्रेष्ठ कर्म है तो समाज जन हमें फॉलो करते हैं, और निकृष्ट है तो आज तो समय ऐसा है, कई वीडियो आप देखते होंगे वायरल होते हैं, जजेस और एडवोकेट्स, जजेस और लिटिगेंट्स, एडवोकेट्स और लिटिगेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप बन रही है, जो हॉट टॉकिंग हो रही है, वो वायरल हुए वीडियो आप देखते ही होंगे। और चूंकि इतना इंपॉर्टेंट रोल है हम लोगों का, तो सारा समाज हमसे उतनी ही अपेक्षा करता है, उतनी ही आकांक्षाएं रखता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 में लिखा है कि वे मनुष्य आत्माएं जो श्रेष्ठ कर्म करती है उसे सारा समाज फॉलो करता है। हमें परमात्मा ने अपना वो डायरेक्ट पोर्टफोलियो दिया है, वो धर्मराज है, और उसका प्रतिनिधित्व करने वाले हम लोग हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा हमारा पार्ट है और कितनी जिम्मेवारी है हमारी। यहां तक कि लिटिगेंट्स या अपराधी वर्ग भी जो हमारे सानिध्य में आते हैं वो भी कहते हैं कि मैं तो बाई बर्थ अपराधी हूं, पर आप ईमानदारी से न्याय करना, यानी कितनी बड़ी अपेक्षा है उस व्यक्ति की भी। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारा। हम जितने स्थिर चित्त रहेंगे उतनी ही हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होगी, उतने ही बेस्ट तरीके से हम निर्णय देने का कार्य कर सकते हैं। हम में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कि जो भी पार्ट मिले मनुष्य आत्माओं को, विशेष रूप से हम लोगों को, उसे बखूबी बहुत मन से, बहुत प्यार से, बहुत आनंद से बजाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 और अध्याय 18 में स्पष्ट वर्णन किया हुआ है कि हमारे कर्म और संस्कार के आधार पर प्रत्येक मनुष्य को संसार में जन्म होता है, जन्म मिलता है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो 4 वर्ण हैं, हमारे ही कर्म के संस्कार के आधार पर हम किस वर्ण में जाएंगे ये सुनिश्चित होता है, उसी अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी स्पष्ट लिखा है कि हमें किसी भी श्रेणी, किसी भी वर्ण में, चारों में से कोई भी कार्य मिले, शुद्ध मन चित्त लगाकर सेटिस्फेक्शन के साथ करना चाहिए। चाहे हमसे ऊपर के वर्ण का जॉब अत्यधिक गुणवान और गुणवत्ता वाला हो, तब भी जो हमें स्वाभाविक कार्य मिला है उसे ही हमें करना चाहिए। इसी से हमारा उद्धार होगा, उसी से क्वालिटी की डेवलपमेंट होगी। समाज तभी आपको पूजेगा जब आप नेचुरल तरीके से जिएंगे। उदाहरण है आपके सामने, रैदास, संत रविदास, सबरी। एक समय था जब ये लोग थे, समाज जन कितना दूर रहते थे, आज सारा विश्व उनको पूछता है, याद करता है। ये वो उस श्रेणी में थे जहां हम बिठाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने साथ में धर्म और अध्यात्म को अपनाया, इसलिए उन्होंने वह कर्म, चौथे वर्ण का कार्य करते हुए भी इतनी उच्च पूजनीय स्थिति को प्राप्त किया। हम आत्माएं आज जो न्याय करती हैं या करवाते हैं, वो सिर्फ उस सुपरफिशियल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस के आधार पर करते हैं जो उन व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो सत्य है या नहीं है, इसका कोई, उसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि कई लोग तो इसलिए शपथ लेते हैं कि वे झूठ बोल सके। ये है आज के समाज की स्थिति। परमात्मा कहता है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 में कि सत्य निर्णय मेरा ही स्वरूप है। यदि सत्य निर्णय है तो मानिए कि यह भगवान है, और सत्य निर्णय करने के लिए हमें एडवोकेट हो या जज, लिटिगेंट्स के, एडवोकेट्स के मन में उत्पन्न होने वाले विचार, संकल्प को रीड करना आना चाहिए। उनके अंदर क्या थॉट चल रहे हैं ये समझ में आना चाहिए। यदि वो आप समझ गए तो सही न्याय कर सकते हैं। आप समझ सोच रहे होंगे कि ये क्या काल्पनिक बातें हैं, परंतु 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब तत्कालीन एडवोकेट जनरल सर नौसरवान इंजीनियर, उनसे पूछा गया कि न्याय व्यवस्था के बारे में आपका क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि मुझे आज भी काजी न्याय व्यवस्था पर ही विश्वास है। काजी न्याय व्यवस्था अर्थात प्रथम और अंतिम न्यायालय, वह न्याय जिससे हारने वाला और जीतने वाला दोनों खुश होकर लौटते थे। हारने वाला भी कहता था कि चाहे मैं हारा हूं कहने को, परंतु हुआ न्याय है। आपको वो कहानी भी अच्छी तरह से याद होगी, जब दो मां अपने बालक को लेकर राजा के पास पहुंचती है, एक क्लेम करती है मेरा लड़का है, दूसरी क्लेम करती है मेरा लड़का है। राजा उनके थॉट्स पढ़ता है और कहता है इस बालक के दो टुकड़े कर दो, आधा उसको दो आधा इसको दो। तभी उसकी जननी तुरंत कहती है कि नहीं, मैं झूठ बोल रही थी, मुझे कारावास का दंड दिया जाए और ये बच्चा तो इसी का है, इसी को दे दिया जाए। राजा समझ गया कि यही इसकी असली माँ है, क्योंकि कोई भी माँ ये तो देख सकती है कि लड़का वहां है जिंदा रहेगा, ये नहीं देख सकती उसके दो टुकड़े हो जाए। राजा ने उसको न्याय करते हुए वो बच्चा सुपुर्द किया और उसको दंड दिया। दोनों ही खुश थी, क्योंकि दोनों ही जानती थी कि हुआ तो न्याय है। तो उस न्याय व्यवस्था को परमात्मा भी कहता है कि न्याय मेरा स्वरूप है, यदि वो सत्य है तो। हम स्थिर चित्त रहे, कंसंट्रेशन रहे, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति हम में उत्पन्न हो, उसके लिए जरूरी है कि हम आध्यात्म को अपनाएं। हमारे संकल्प कर्म का पहली सीढ़ी है, अर्थात प्रत्येक कर्म करने के पहले संकल्प उत्पन्न होता है। संकल्प इतने पॉजिटिव और शक्तिवान होना चाहिए। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। एक मच्छर पेरेंट और उसके यहां नया मच्छर पैदा हुआ, कितने पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए, संकल्प। तो उन मां बाप बोले बच्चे मच्छर को कि तुम जिंदगी की पहली उड़ान भरकर आओ और फिर आकर के हमें अपना अनुभव सुनाओ कि तुम्हारी जिंदगी की पहली उड़ान का अनुभव क्या रहा। वो न्यूली बेबी बच्चा मच्छर उड़ता है, सभा में ऐसे उड़ते हुए जाता है और लौट कर आता है। पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम्हारी पहली उड़ान का अनुभव कैसा रहा। आप उसकी पॉजिटिव थिंकिंग देखिए, वो कहता है कि मम्मी पापा इतनी वंडरफुल एक्सपीरियंस था कि मैं ग्लेड हो गया, खुश हो गया, आनंद हो गया। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि ऐसी क्या बात देखी तेने। बोले मैं जिधर से भी उड़ता था उधर लोग तालियां बजा रहे थे। आप देखिए उसने उसी विचार को कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। ये सुंदर सकारात्मक विचारधारा उत्पन्न करने से हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। हमें एक और बात बताऊं मैं आपको कि जो भी संकल्प हम करें, जो प्रज्ञावान लोग हैं, विद्वान हैं, समाजजन हैं, समाज को गाइड करने वाले लोग हैं, हम लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, उन्होंने अपने हर संकल्प को बड़े बारीकी से और गंभीरता पूर्वक वाच करना चाहिए। आप देखते होंगे कि जब घर में कोई अनुष्ठान होता है धार्मिक, कोई भी किसी भी प्रकार का, आप पंडित बुलवाते हैं, ब्राह्मण, और वो आपसे संकल्प करवाता है इस पर्टिकुलर अनुष्ठान के लिए, तब तीन बार बोलता है वो, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, और फिर कहता है आप छोड़िए जल। आप सब अनुभवी हैं, आपने सोचा वो इसलिए कि हर बार वो पंडित ब्राह्मण याद दिलाता है कि तुम चेक करो यजमान कि जिस संकल्प से तुम अनुष्ठान करना चाहते हो क्या वह परमात्मा के निमित्त है, शिव संकल्प है, विश्व कल्याण के लिए है। दूसरा, तुम चेक करो कि क्या तुम्हारा संकल्प समाज के हित के लिए है। तुम चेक करो क्या वह संकल्प तुम्हारे अपनी आत्मोन्नति और स्वयं के उत्थान के लिए है, और यदि है तो छोड़िए संकल्प। कहने का भाव, हमें हमारे हर संकल्प पर बड़ी ही वाच करना चाहिए। हमारे बोल सुमधुर हों, मीठे हों। ये पर्सनालिटी में क्या क्या काउंट होता है, कुछ बातें प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत मीठे और मधुर होना चाहिए। हमें वो प्रामाणिक बातें बोलना चाहिए जो समाज सहज रूप से स्वीकार कर ले। महाभारत में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, हल्ला हुआ, अश्वत्थामा मारा गया। उसके पिता द्रोणाचार्य ने कहा, असंभव, मेरा पुत्र अश्वत्थामा अजय है, उसे कोई मार नहीं सकता, अमर है वो। लेकिन फिर भी मैं अर्जुन, भीम, नकुल, किसी के बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा बोलने का वे, हमारा कही हुई बात कितनी प्रामाणिक होना चाहिए जो सहज रूप से स्वीकार कर ली जाए। यदि युधिष्ठिर कह दे कि हां तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो मुझे स्वीकार है। युधिष्ठिर से पूछा, उसने कहा अश्वत्थामा तो मारा गया, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। फिर धीरे से बोले, नरो या कुंजरवा, उसी समय श्री कृष्ण जो बहुत चतुर थे, उन्होंने पांचजन्य शंख फूंक दिया और वो जो बात की लाइन थी वो द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए, विश्वास करा कि अश्वत्थामा कहने का भाव कि हमारी बात इतनी प्रामाणिक हो, शब्द इतने मीठे हो कि सहज रूप से सब स्वीकार कर ले। कौन कहता है कि अल्फाजों में जान नहीं होती, कौन कहता है कि अल्फाजों में जान नहीं होती, अरे इसी से दुआ, इसी से आरती और इसी से अजान होती है। तो हमारे शब्द बहुत मीठे होना चाहिए, हमें हमारी बहनों का हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या काउंट होता है, बहुत सम्मान, हर प्रकार से सम्मान करना चाहिए। वनवास के समय श्री राम अपने परिवार के सहित सीता जी और लक्ष्मण के साथ अनुसुया त्रिऋषि के आश्रम में पहुंच रहे थे। उन्होंने रास्ते में समझाया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, अत्रि मुनि मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरे को देखकर ही मेरे चरणों में लौट जाएंगे, इसलिए जाते ही तुम उनको प्रणाम करना, और हे सीते तुम मां अनुसुया के चरणों में जाकर बैठना, क्योंकि शंकर, ब्रह्मा, विष्णु तीनों को छोटे छोटे बालक 6 महीने के इसी ने बना दिया था, इतनी शक्ति है। ये शिक्षा दी और कहा कि जो आशीष वो दें उसके प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना। मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जब भी हमें बड़े से आशीष मिले, चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे हमारे जो भी हो, उनके शब्दों पे जरूर ध्यान दें कि उस आशीष में क्या शब्द कहे हैं, बहुत काम आते हैं। प्रैक्टिकल करके देखिए, दुआ और आशीष ये हमारी पर्सनालिटी को 4 चांद लगाती हैं। महिलाओं के सम्मान, बहनों के सम्मान के लिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि इस देश की नारी में वो शक्ति है। अनुसुया जी, अत्रि ऋषि एक दिन गंगा जी से स्नान करके लौट रहे थे और उनके माथे पर पसीने की बूंदे आई, तो अनुसुया जी बोली, हे ऋषिवर, मैं क्या देख रही हूं, तुम स्नान करके आ रहे हो और माथे पर पसीने की बूंदे हैं। तब उन्होंने कहा कि अनुसुया, गंगा जी बहुत दूर है, स्नान करके जब लौटता हूं तो परिश्रम से मेरे माथे पर ये बूंदे तुझे दिखाई दे रही है, मैं इस देश की नारी में कितनी शक्ति है वो बता रहा हूं। अनुसुया जी को ने तत्काल एक मुष्टिका का प्रहार किया उस धरती पर जहां वो खड़े थे आश्रम में, और वहीं गंगा जी प्रकट हो गई और आज भी गंगा जी वहां से बहती है। तो हमारे देश की इस नारी का हमें जितना सम्मान हम करेंगे, जितना पवित्र दृष्टि रखेंगे, उतनी ही हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। हम समय नहीं है, अन्यथा नानी पालकी वाला जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, वी द नेशन, उसमें एक बहुत अच्छी बात कही और उसका सार यह है कि हम लोग जुरिस्ट पर्सन, खास करके एडवोकेट्स, धन कमाने के पीछे दौड़ते रहते हैं। मैं आपको निवेदन करूं, क्यों कमाता है धन इतना, क्यों इकट्ठी करता है दौलत इतनी, याद रख कफन में जेब नहीं होते। इसका आशय ये नहीं कि हम धन एकत्रित न करें, धन न कमाएं, खूब कमाएं। लक्ष्मी नारायण के पास भी बहुत ऐश्वर्य था, राम और सीता के पास भी, लेकिन उस धन का सदुपयोग करें, समाज के कल्याण के लिए लगाएं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाएं, संसार में दुखी प्राणियों का विश्वास जीतने के लिए, उनकी मदद करने के लिए लगाएं। इंदौर में एक पलाशा क्षेत्र है, मैं जब भी निकलता हूं तो वहां एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ वो हमेशा याद आता है मुझे। वहां एक बोर्ड टंगा है, मजार है वहां, और उसमें लिखा है कि दूसरों की मदद करो तुम एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे। तो इसलिए धन कमाना बुरी बात नहीं है, पर ये पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है। यदि आप भामाशाह भी बनते हैं, दानदाता भी बनते हैं, समाज कल्याण के लिए उसमें से सदुपयोग भी करते हैं, तो ऐसी हमारी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने जिंदगी का तजुर्बा और अनुभव है पिछले 40 वर्षों का ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़कर, कि अध्यात्म ही एकमात्र तरीका है। कल भी हमारे किसी श्रेष्ठ वक्ता ने कहा था कि इतना धर्म बड़ा हुआ है फिर भी उतने ही अपराध बढ़े हुए हैं, शायद दास साहब ने कहा था। लेकिन अध्यात्म जो एक अलग चीज है, धर्म से अलग विधा है, इसको अपनाने से ही हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा, हमें स्थिर बुद्धि होगी। अन्यथा हमारे विचार यदि डिस्टर्ब रहे तो उसका परिलक्षण भी समाज में होगा। एक गुजराती कहावत है, हवाड़ा में हो उसे तो नल में आउसे, जो ओवरहेड टैंक में होगा वही बाथरूम के नल में निकलेगा। तो हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक बहुत स्थिर, बहुत पावरफुल, बहुत कंसंट्रेट हो, उसके लिए केवल और केवल एकमात्र उपाय अध्यात्म। आज मैं योग का नाम नहीं ले सकता क्योंकि बाबा ने आज मुरली में प्रातः कहा कि बच्चे योग नहीं, याद बोलो, बात की याद करो, योग ही है वो। जितनी परमात्मा की याद करोगे, मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम और जुरिस्ट विंग की सारी बहनों का आभारी हूं कि उन्होंने प्रातःकाल हम लोगों के लिए इतने बढ़िया बढ़िया सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं, बहुत लाभ लें उसका, बहुत काम आएंगे आपके। प्रतिदिन आप परमात्मा को खूब याद करो, दिल से हमारा बाप है वो, और उसको याद करने में क्या तो मेहनत और क्या धर्म, क्या सिद्धांत, बस याद करो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हमारे घर आप देखिए, कोई आंटी अंकल आ गए, बिस्किट ले आए, कोई मिठाई ले आए, टॉफी ले आए, तो हम बच्चों को बोलते हैं बच्चे अंकल को थैंक्स बोलो, आंटी को थैंक्स बोलो, तुम्हारे लिए टॉफी लाए, तुम्हारे लिए मिठाई लाए। अरे ये बात अलग है, बच्चा सुनता नहीं है, चला जाता है। अरे सूर्य जो हमें तपन देता है जिससे सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, चंद्रमा जो शीतलता देता है, जो आपको जीवन दिया है, जो आपको स्वस्थ रखता है, जिसने मान और सम्मान दिया है, जिसने पद और पोजीशन दी थी, उस परमात्मा का एक दिन भी तो कहें कि तेरा शुक्रिया। न तो हम बच्चों को कहते हैं कि शुक्रिया अदा करो, और न हम खुद करते हैं उसका। यही योग है, यही याद, उसको रोज याद करो कि तेरा शुक्रिया परमात्मा कि मेरा दिन आज बहुत अच्छा निकला। और उसकी विधा है, कोई भी चीज विधि से करो तो सिद्धि प्राप्त होती है, वो रोज प्रातः सेशन में आपको समझाई जा रही है। कहने को बहुत कुछ है, फ्रॉम सॉरी, समय की मर्यादा है, हमें सुनना है, बहुत वक्ता है श्रेष्ठ। मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स देता हूं और निवेदन करता हूं कि फिर मिलेंगे तब बात करेंगे, पर प्रत्येक सेशन अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से, सरल तरीके से विषय को स्पष्ट किया और किस प्रकार आध्यात्मिकता द्वारा हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है इसके बारे में बताया, बहुत सुंदर उदाहरण भी दिए, और पॉजिटिव थिंकिंग के क्या फायदे होते हैं, कैसे हमारे जीवन में वो मायने रखती हैं इसके बारे में भी बताया, और परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा हमारा पिता है और हम उनके बच्चे हैं, तो उनके साथ कैसे इजीली संबंध जोड़ना है, सबका शुक्रिया अदा करना है, इनके बारे में आपने बताया। जस्टिस सिकरी, एके सिकरी ने कहा था कि लॉ हैज सम लिमिटेशंस, समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू गो टू द रूट कॉज जस्ट बाय द लॉ। लॉ सेटल्स द डिस्प्यूट एंड गिव्स द जजमेंट्स, बट स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स इन गोइंग इनटू द रूट कॉज। तो स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करती है। अभी इस कार्यक्रम का हम विधिवत उद्घाटन करते हैं कैंडल लाइटिंग के द्वारा। मैं स्टेज पर उपस्थित हमारे मेहमानों से अनुरोध करती हूं कि आप आकर इस कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन करें। साथ साथ हाँ, उसके पहले मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि हमारे स्टेज पर जो मेहमान उपस्थित हैं उनका पगड़ी पहना, उनको पगड़ी पहनाएं, साफा पहनाएं। बहने साफा पहना रही है मेहमानों को, और उसके बाद विधिवत उद्घाटन होगा। तब तक मैं स्टेज पर सभा में से कुछ मेहमानों को आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर दीप प्रज्वलन में अपना सहभाग दें। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी दास जी, ब्रदर नाथमल भाई जी, बीके विद्या बहन नेशनल कोऑर्डिनेटर, ब्रदर एम वी रमेश जी डिस्ट्रिक्ट चर्च हैदराबाद, ब्रदर आलोक शर्मा जी वाइस चांसलर मेवाड़ लॉ यूनिवर्सिटी चित्तौड़, ब्रदर डी के गांधी आईपीपी AISTI, मिस्टर श्रीनिवास राव, के सी कौशिक जी, ब्रदर लक्ष्मण कश्यप जी भास्कर राव, ब्रदर सुखचंद चैन, हमारे नीचे भी जो कैंडल लाइटिंग का स्टैंड रखा है वहां भी हमारे जितने भी सभा में उपस्थित JMFC एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, CJSD, CJJD जो भी है वो भी नीचे कैंडल लाइटिंग में हिस्सा ले। और भी कुछ मेहमानों के नाम ले रही हूँ, वो भी नीचे कैंडल लाइटिंग में हिस्सा ले। मोहिंदर बजाज जी, चरण सिंह जी, अविनाश श्रीधर गाढ़े जी, आप भी आए और नीचे जो कैंडल स्टैंड है वहां पे आप, और साथ साथ सभा में उपस्थित बाकी जो भी हैं वो सभी अपना मोबाइल का टॉर्च जलाएं, आप भी दीप प्रज्वलन करें साथ साथ। ये दीप प्रज्वलन अपनी आत्मा की ज्योति जगाने का एक साधन है।
अपने अपने
बहुत सुंदर। और जो भी जजेस है, जुडिशियरी जुडिशियल ऑफिसर है, वो खुद में आए और सामने अपना करें।
अपने मन में जग उजियारा हो,
बहुत सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य,
सुख ही सुख कण कण में
अपनी आत्मा की ज्योति
जगाए। संकल्पों के दीप जलाए, परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
अभी हमने हमारे कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया दीप प्रज्वलन द्वारा, और साथ साथ स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म में भी अपनी आत्मा की भी ज्योति जगाई है। और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डॉक्टर बी आर सडंगी जी, जज हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा। आप नयागढ़ से ओडिशा से हैं और एक बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपका लॉयर के रूप में भी बहुत ब्राइट करियर रहा है और सारे ही जो भी लॉ के ब्रांचेस हैं उसमें आपने केसेस लड़ी है, कार्य किया है, बहुत हार्ड वर्किंग है। और आपका सोशल, रिलीजियस और फिलंथ्रोपिक जो एक्टिविटीज है उसमें काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बहुत उमंग उत्साह से आप कार्य करते हैं। 20 जून 2013 से आप हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा के जज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आध्यात्मिक सशक्तिकरण से ही न्याय का क्षेत्र सशक्त होगा। मैं सर के लिए दो शब्द कह रही हूं। आध्यात्मिक सशक्तिकरण से ही न्याय का क्षेत्र सशक्त होगा। माननीय न्यायाधिपति के नेतृत्व से विश्वगुरु भारत होगा, तो मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डॉक्टर बी आर सडंगी जी आए और आप अपना मुख्य अतिथि का वक्तव्य पेश करें।
ओम शांति। माय एस्टिम्ड the rajyogini bk puspa, the chairperson of jurisdiction of new delhi, rajyogi brijmohan ji, additional secretary general brahma kumaris mount abu, the rajyogini lata r agarwal, national coordinator jurist wing mount abu, Dr. B.K. Rashmi Oja, National Coordinator, Jurist Wing, Mumbai. Then, Raj Yogini, B.K. Sadha, Headquarter Coordinator, Jurist Wing, Mount Abu. Above all, esteemed Honorable Mr. Justice V. Aishwarya, the former judge of Andhra Pradesh at Hyderabad, Honorable Mr. Justice B. D. Rathi, former judge of Madhya Pradesh High Court, Honorable Justice A. S. Pachipure, former judge of Bangalore High Court, Karnataka High Court, Bangalore, my esteemed none other than the former judge of Orissa High Court, Bimal Prasad Das, present on the of the dais, and all other dignitaries, those who are present of the dais, and above all, my dear, advocates, friends, and other persons, those are sitting up the dais and witnessing this program. Really, I am overwhelmed looking at you all, because it is Mini Bharat, representation from all states of the entire country are before me. Really, I am very happy that arrangement of such function really, is necessary at this crossroad of dispensation of justice. I believe that we are at a stage where it is necessary to empower our jurist system through spiritualism. It is not that we are advancing towards technology. Technology may be one of the part of development, but that cannot brush aside the feelings of a human being, the understanding of a human being, the great thoughts of a human being are dispensers of justice. Because the justice delivery system is based on the faith of the public. Unless the people have reposed on faith and the public itself, we can't succeed and we can't have any say in the matter. Therefore, my humble request would be to have the empowered judicial system itself, to gather the public confidence. We shall have to have very punctual in our functioning. Because if we talk about the advocates or lawyers, when the people in distress, they are coming to the lawyers to have a help. If by the time the client reaches the lawyer, if he finds that his favorable lawyer is not present, that creates a basic disappointment in the mind. And that itself a great minus point on the part of the counsel who was not present, to whom a client seeks for help. Therefore, the client must know by which time my advocate is available in his office, so that I can meet him and I can express my feeling, I can say my problem, and he is the person to whom I can deliver, so that the truth can be revealed through him by analysis of the provisions of law. If the counsel is not present, it creates a disheartenment in the mind, and that itself causes a hardship in the mind of the client. Therefore, to gather repose, confidence of the client, I humbly request the advocates should adhere to the punctuality. So also this same principle also applicable to honorable judges. Nowadays it is observed that many of the courts in many places are sitting in different times. Suppose the court time is 10:30, many of the judges, they come to the court at their caprice and whims, sit at 11:30, even 12, then gets up at 1, then sit at 2 o'clock, then rise at 2, 3 o'clock. That should not be attitude of a judge. Because they are the actual feature, an actual figure for the society, because they are the person, they have to show the beacon light to society that yes, here a person who is adhering to the time, sits at 10:30, rise at 1:15, sits at 2 o'clock and sits till the board adjusts. Therefore, my humble request, both the lawyer as well as the judges, that they should be adhere to the time and maintain the punctuality, so that the people who repose confidence in him, saying that yes, the court is sitting at 8:30 and discharging his responsibility, and the lawyer is available when we require his help. So these are the things which is required to be done by the advocate as well as the judges. I am not there to sermon you all, but only question I am pointing out, the karma is dharma. If you do the work, then automatically the dharma will come to you. That means we can reach the goal of spirituality through your karma. That one has to do, follow the punctuality, one has to follow the principles, one has to do something better, that itself amounts to achieve the dharma, which is requirement of today's topic, to my understanding. And work is worship, that everybody says, but how many persons are preaching this same? If anybody preaches this same, then definitely he will reach the pinnacle of success, and his success only because of adhering to certain principles. that principles is nothing but the spiritual achievement of his own life. Suppose everybody says that yes, work is Joseph, all right, work is Joseph, no problem for that. But if they are not preaching the same, by saying the same, nothing can be done. And you should be set an example for others, that here is a person who is working hard and giving something to the society in a positive way, so that it will empower our spirituality. And this spirituality is nothing but the things which we are preaching in order to achieve the ultimate goal. And more so, now human needs are unlimited. Suppose I and two of my friends joined in the profession. If X has purchased a car, tomorrow you will say that yes, X has purchased a car, then I must need a car. But can I purchase it? Because of the looking at my income, looking at the clientele, everything, I should not be persuaded by any outside activity, rather I should cut my coat according to the cloth. Therefore, I should limit my requirement as per what it is required to be done. Then, consequently, what will happen? The people will get the proper justice. Otherwise, suppose for a small matter also, you can charge heavily so that the client will dishearten and you will be facing frustration and ultimately you will be nowhere. Rather, you should be contented yourself with the income which you have got, rather than running after a marriage to get higher income and by spoiling your own thirst and losing all spirituality to achieve the goal. Then my earnest request to all of you, that one has to be very, very compassionate, very, very honest, and very, very sincere, and do the job with all patience. I am telling you this, give an example. Today morning, when I was talking to Honorable Justice Aishwarya, he said, after retirement, I am enjoying a lot. Then I put the question, sir, how? Now, after enjoyment, just I am in this Brahma Quarries. Whenever the work is available, I am coming here and going outside also. But I spend my time with nature. I have orchard. If I am wrong, sir, can you correct me? If you have not told me, can you correct me? I have a mango orchard. I spend time with nature. Really, it is a fantastic thing. Whatever services rendered during his career, now he has to enjoy and spend time with nature. Very good. But one day, a group of monkeys came to his orchard. And they started devastating the orchard. Then Justice Aishwarya could not able to resist those things. What has happened? I love nature. But now, however, from this group of monkeys came and spoiled my orchard. Then he tried to protect his own orchard. That also is spiritualism. Because what I grow, I must see that it must be protected. Then this monkey group, what they thought, they said, no, Justice Aishwarya has not allowed us to go enjoy his orchard. We can't devastate them. Now we'll start our own orchard. Then the monkeys, they sat together. They are headed by the head monkeys. They find out a place to have their own mango orchard. Then the land was free from everything. Then this is during this mango time, they collected some seeds of mango and planted there and bring some water through their mouth and also poured in the sapling. But by every day morning they are doing hard. And every day evening they think, what has happened? It is not sampling, you know, giving the seed. Then next in the evening, everybody go and see how far this seed has grown. Then like this, now they could not have come out of orchard. The entire thing was devastated and the entire thing was frustrated. This small story I have told you because if you don't have a planning, if you don't have a thinking, you don't have a thought about the issue, you can't progress. And for that serious thinking, it is required that one should be spiritually think that how I have to plan my lifestyle. If one has to plan his lifestyle, then only he can successful in his life. Then I can say, a serious patient has been hospitalized, was under drip. A nurse was attending him. After a few days, the doctor told the nurse that you start him giving some bread in the morning. And the patient was also very much happy that now he'll be given some oral food. The nurse came and gave some toast to the patient to eat. But patient, instead of taking that toast, threw it to the face of the nurse, and nurse became disturbed towards the behavior of the patient, but didn't say anything. Just wiped out from her mouth, face, and went and brought another one. She has to face the same problem. Again went and brought a third one and consoled the patient saying, "Yes, sir, look here. Doctor has said that you have to take this breakfast today. By throwing this, I will not leave you. You have to take this bread." Then the patient has taken it, and ultimately the result was the compassion, the patience, the nurse has borne by herself, has given the patient a life to survive. Therefore, my story is that you have to bear all these odds in your life. If you bear all the odds in your life and have the patience, then only you can have an asset to the society to serve. And that itself calls a spiritual empowerment for the justice delivery system. I am told that when Gautam left the house in search of a truth, he had been to many of the gurus and learned many things, but he was not satisfied. Then become frustrated and thought that no, this is not the way where I can survive. I have to do something more, or I have to leave this and adopt the kingship so that at least the people will be of the state will be benefited. Then while coming on the way, he sat by the side of a creek. The creek was flowing and he was minutely observed. This small bird was taking water from that creek and throwing it in the outside. Likewise, the bird was doing like this for several times. Ultimately, he asked, "Oh bird, what are you doing?" "Now I want to dry this creek." "Now why? What has happened to you? Why you want to dry the creek?" "Now I want to dry the creek because of the reason that yesterday the creek was flowing so high that my nest and two of my eggs have been flown through this creek. Therefore, I lost my family." Then Gautam asked him, saying that, "Oh, bird, can you do so? It is a forest creek. Water is coming. Can you do so?" "Yes, I can do." And by this process, he again started the same thing. Ultimately, the forest god was satisfied with the determination of the bird, and he appeared, said, "Bird, look here. Yes, it is a great loss to you, but you have to have the patience to tolerate everything." But he said that, "All right, I'll give back to your two eggs which you have lost yesterday, but don't try to change the nature. But your patience is absolutely acceptable, and I congratulate you for your patience." And this was heard by Gautam. Thereafter, Gautam has changed himself like anything, because you have to work in a manner, having the patience, then only you can succeed in the life. And thereafter, the Gautam had gone for a meditation and ultimately he became Buddha. This small story I am saying because of the reason that you are the person to whom we can rely upon, to whom all the people can rely upon, and these benefits can be extended to all the persons who are the seekers of the justice, and this can only be done through your conduct. I believe that all of you have that much of patience, honesty, integrity, sincerity, and what not with you to deliver justice to the people, those who are in need. Be compassionate, show your greatness to the people, and ultimately the purpose of this deliberation will achieve through spiritual empowerment for the delivery of justice in this country. And I believe that this is a very good endeavor made by the Brahma Kumaris, who are all, most of the members are lady members who have got tremendous patience, and this patience has also taught us how to live in the society. I am really grateful to all these persons, those who have been organized this function, and your presence, and understand that definitely we are moving towards a good direction and for good cause, and with all this I take leave of you giving a good message that let us work together and flow together and do for the best of the best for the country, and this is by making a judicial empowerment by spiritualism. Thank you all for giving this opportunity.
Thank you very much, our chief guest Honorable Mr. Justice Dr. B.R. Sadangiji. आपने अपने विद्वत्तापूर्ण अनुभव युक्त विचारों से हमें लाभान्वित किया. कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हुए मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि आप सब एक बार थोड़ा ताली बजाए तो रिफ्रेश हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. क्योंकि अभी हम हमारे आदरणीय पुष्पा दीदी को हम आमंत्रित करते हैं. दीदी जी हमें बहुत सुंदर प्रेरणाएं भी देंगी और मेडिटेशन भी कराएगी. क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से मेडिटेशन सिखाया जाता है. आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसा होता है, कैसे उनसे संबंध जोड़ा जाता है, वो सिखाया जाता है. पोप पॉल VI ने कहा था कि इफ यू वॉन्ट पीस वर्क फॉर जस्टिस. इफ यू वॉन्ट पीस वर्क फॉर जस्टिस. जो हम सभी न्यायविद कर रहे हैं, मेडिटेशन आत्मा और परमात्मा से संबंध जोड़ना सिखाता है और उससे हमारे जीवन में सुख, शांति, शुचिता, आनंद से हमारा जीवन भरपूर हो जाता है. आओ राजयोग की राहों में, आ जाओ प्रभु की शीतल छाओ में. हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी जी जो इस जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन है, हम उनकी छत्र छाया में कार्य कर रहे हैं. बहुत सुंदर गाइडेंस देती है दीदी जी. बहुत पेशेंस से काम लेते हैं. कभी भी हड़बड़ी या कुछ ऐसे चिंता कुछ नहीं होता है. बहुत पेशेंस से हमें गाइड करती है, सुनती है, समझती है. दीदी जी पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से सेवाएं देती हैं. हमारा दिल्ली में करोल बाग जो पहला सेंटर था उसकी आप डायरेक्टर हैं और अन्य भी कई गतिविधियों में आप शामिल रहते हैं, सेवाओं के शामिल रहते हैं. देश विदेश में आपने बहुत सेवाएं की है, ब्रांचेस भी खोले हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के. तो मैं अभी आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पुष्पा दीदी जी आए और हमें प्रेरणाएं भी दे और मेडिटेशन का सुंदर अनुभव भी कराए. आदरणीय दीदी जी.
ओम शांति. ओम शांति. Almighty Supreme God Father की creation, आप सब प्रिय आत्माएं भाई और बहनों, विशेष रूप से मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय भाई साहब, आज के चेयरपर्सन राजयोगी बी के ब्रिजमोहन जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू, और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं रिस्पेक्टेड ब्रदर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पी आर सारंगी, जज हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, और सभी लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हमारे विशेष गेस्ट सभी भाई बहने, बहुत खुशी हो रही है आप सबको इस प्रांगण में देखकर। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज का समय, आज का है युग कैसा है, जिसमें भौतिकता है, आधुनिकता चरम सीमा पर है, और वैसी ही समस्याएं भी बहुत तेजी से बढ़ती ही जा रही हैं, और उन्हें सबको फेस करना पड़ता है। और विशेष रूप से आप सब तो अच्छी तरह से इसलिए अनुभवी हैं कि वह केसेस आपके ही पास आते हैं, तो ख्याल चलता है। और ब्रह्मा कुमारी विशेष इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस आप सबके लिए ऑर्गेनाइज करती ही आ रही है, और विषय भी आप सब अच्छी तरह से आज का जान चुके हैं और सुन भी रहे हैं कि कितना आपके जीवन में एम्पावर्ड होना जरूरी है। ऐसे तो आप सब बुद्धिजीवी हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, कानून के अच्छी तरह ज्ञाता ही नहीं समर्थ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब ऐसे केसेस, ऐसी समस्याएं आप सबको सुलझानी पड़ती हैं, और सचमुच जो मनुष्य के मनचित में भी नहीं हो सकती, स्वप्न में भी नहीं हो सकती, उन्हें आप सुलझाते हैं, और कितना संघर्ष चलता होगा जब कानून आपके सामने है और अंतर आत्मा आपकी अंदर संघर्ष कर रही है कि मुझे क्या न्याय देना चाहिए, चाहे न्याय दिलाने वाला हो चाहे देने वाला हो, क्योंकि न्याय का वास्तविक आधार तो सत्यता ही है। ये भी आप सब कुछ अच्छी तरह से समझते ही हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं, परंतु ये बहुत जरूरी है कि उतना ही आप अंदर से स्वयं को शक्तिशाली महसूस करें, निष्पक्ष महसूस करें, निस्वार्थ महसूस करें, और अंदर एक हर्ष, क्योंकि जब निर्णय ऐसा होता है तो दिलाने और देने वाले और लेने वाले को भी बहुत हर्ष होता है और उसकी दुआएं भी मिलती हैं। तो इसके लिए एम्पावरमेंट कैसे आए, उसका माध्यम एक ही है, और वो है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। ये भी आप यहाँ के वातावरण में अवश्य सुन रहे हैं और समझते भी होंगे, दिल से अगर आप सोचेंगे तो आपका भी अपने अंदर से ये आवाज आएगा कि इसकी बड़ी आवश्यकता है आज के टाइम में। और ऐसे ही समय पर परमात्मा पिता, जो हम सबका फादर है, सर्वशक्तिवान है, इस विश्व का रचयिता है, वो इस धरा पर अवतरित होते हैं और हमें जीवन की सच्चाई सुनाते हैं। इब्राहिम लिंकन भी कह गए कि ईश्वर मेरे पक्ष में है या नहीं, पर मैं इतना जरूर मानता हूं और समझता हूं कि मैं सदा ईश्वर के पक्ष में रहूं, क्योंकि वह हमारा क्रिएटर है, इस वर्ल्ड का डायरेक्टर है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाला है, हम सब उसकी क्रिएशन है और हमारे कर्मों की गति को भी वो अच्छी तरह से समझते और जानते हैं। और अब वही ही समय है कि हम सबको उस पिता की संतान होने के नाते, जैसे वह प्योरिटी का सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ प्योरिटी, ओशन ऑफ एवरीथिंग है, तो जरूर हम क्रिएशन उसकी हकदार हैं और उन्हीं संस्कारों को अपने जीवन में लाएं, इसकी बड़ी जरूरत है। तो आध्यात्मिकता हम उसे कहेंगे जो हमारे अंतर मन के विवेक को जगाती है, हमारे अंदर आंतरिक शक्तियां लाती है, हमारे अंदर मूल्यों का समावेश करती है, और तब ही हम परमात्मा के, क्योंकि उसकी संतान है, तो उन जैसे गुणों को जीवन में लाकर जीवन को एक ऐसा श्रेष्ठ सुखदायी, जैसा हमारी आत्मा अंदर से चाहती है, वैसा सहज बना सकते हैं। तो मैं इस पर बहुत अधिक नहीं कहूंगी। रोज सुबह की क्लास आपको जो मिल रही है मेडिटेशन की, उसमें बहनें काफी कुछ आप सबको स्पष्ट कर रही हैं, और जैसे जैसे आप उसे दिल लगाकर सुनेंगे तो आप इन 3 दिन में भी उसका अच्छी तरह लाभ ले सकते हैं। तो अभी हम 2-3 मिनट इस बात का ही अभ्यास करते हैं, क्योंकि हम परमात्मा की ही संतान है, इसलिए उनसे संबंध जोड़ना और उन्हें याद करना हमारे लिए बहुत आसान है। सिर्फ नो दाई सेल्फ, रियलाइज दाई सेल्फ, इसकी जानकारी आपको यहाँ अच्छी तरह मिल रही है और मिलती जाएगी। अभी संकल्प कीजिए, मैं इस विनाशी 5 तत्वों के शरीर में एक चमकती अविनाशी ज्योति, इमॉर्टल, प्योर, पीसफुल आत्मा हूं। मस्तक में विराजित हूं। इन कर्मेंद्रियों से देखने, सुनने, बोलने सब कर्म करती हूं। यह शरीर सिर्फ माध्यम है, मैं नहीं। मैं वास्तव में उस ईश्वर पिता की सृजना संतान हूं, आत्मा हूं। और मेरा निवास स्थान भी परमानेंटली यह दुनिया नहीं, यह कर्म क्षेत्र है, एक मंच है, लेकिन चांद सितारों से पार सबसे ऊपर परलोक परम धाम शांति धाम है। यहां ही मेरे पिता ज्योतिमय बिंदु अजन्मा अशरीरी जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, इसी लोक के वासी हैं और मैं भी वहां की ही वासी हूं। वहां से इस धरती पर आकर यहां की प्रकृति पांच तत्वों का यह चोला धारण कर अपना रोल अदा कर रही हूं। और अवश्य ही अब इस सत्यता इस असली पहचान के आधार पर सहज ही अपने जीवन में सदा के लिए सुख की शांति की प्रेम की आनंद की पवित्रता की अधिकारी होकर ही रहूंगी। ओम शांति। हमारा आपसे इतना ही विनम्र आग्रह है कि ये जो थोड़े से मिनट आपने इस समय जो सुना जरूर अंदर गया होगा, उसे दिन में बार बार बीच बीच में 2 मिनट 3 मिनट अभ्यास करते रहेंगे, जो कि इस वायुमंडल में आपके लिए बहुत सहज है, तो आप स्वयं ही जल्दी ही ये महसूस करेंगे कि सचमुच जीवन है तो यह है। और आप अपने कार्यस्थल पर भी उसका पूरी तरह लाभ ले पाएंगे और आपकी निर्णय शक्ति परखने की शक्ति अन्य पावर्स जो आपको आवश्यक हैं उसे भी ग्रहण कर पाएंगे। मंच पर उपस्थित हमारे अन्य सभी रिस्पेक्टेड वक्तागणों ने अच्छी अच्छी बातें आप सबको सुनाई, मैं उन सबके लिए भी बहुत मेरे पास शब्द नहीं है क्या कहूं। तो आप सब कितने भाग्यशाली हैं जो इतना खजाना आप सबको मिल रहा है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पा दीदी जी, सच में आप हमें एक अलग दुनिया में लेके गए थे। ऐसा ही अनुभव किया ना सभी ने कि यहीं थे, नींद आई नहीं ना? हम सचमुच एक अलग दुनिया में पहुंच गए थे और नीचे आने के लिए थोड़ा इच्छा नहीं हो रही थी, परंतु कार्यक्रम चल रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, तो हमें नीचे आना ही था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी आमंत्रित करती हूँ हमारे नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर ब्रदर पंकज घिया जी। आप नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर हैं। आप एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। मोर देन 32 इयर्स से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉरपोरेट लिटिगेशन सपोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप घिया लीगल फर्म है, उसके आप फाउंडर एंड ओनर हैं। घिया लीगल फर्म जो है वो लीगल एंड टैक्स सॉल्यूशंस देती है। आप राजस्थान गवर्नमेंट ने जो GST कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है उसके आप मेंबर हैं। आप पैन इंडिया नेटवर्क ऑफ लाइक माइंडेड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोफेशनल नेम्ड जीएसटी वर्ल्ड के भी मेंबर हैं। आपने अनेक ट्रेड एसोसिएशंस और जीएसटी एडवाइजर फॉर ट्रेड इंडस्ट्री के इसमें भी आप पैनल पर हैं। आप एडवाइजरी कमेटी राजस्थान जो है उसमें भी मेंबर हैं। प्रेजेंटली ही इज एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ FORTI है। आपने 2000 से भी अधिक लेक्चर्स इन जीएसटी और टैक्स पे दिए हैं और आपने राजस्थान वैट के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं और जीएसटी के ऊपर भी 7 से अधिक बुक्स लिखी हैं। तो ऐसे हमारे बहुत विद्वान वक्ता ब्रदर पंकज घिया जी हमारे बीच में हैं। आप इस आज के इस विषय पर अपनी शुभकामनाएं देंगे, परंतु मेरा हमारे से अनुरोध है कि थोड़ा संक्षिप्त में अपने वक्तव्य को हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे।
मैं तो सिंपली ये कहना चाहूंगा, ला जाओ आप अद्भुत और बेमिसाल। आज का ये समागम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जीएसटी इनकम टैक्स कॉरपोरेट लॉ को छोड़ के कभी स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में आऊंगा, और मेरा ये पहला मौका मिला जब हमारे साथी संदीप अग्रवाल के मार्फत हमारी संस्था को जोड़ा गया और आज ब्रह्मा कुमारीज में मैं यहां पर हूं। और यहां आकर जब मैंने देखा तो वाकई में लगा कि बड़े बुजुर्गों ने गलत नहीं कहा था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु के बिगर कुछ नहीं है और जो स्पिरिचुअलिटी है उसके बिगर कुछ नहीं है। हम एक नॉर्मल प्राणी तो बन सकते हैं, एक आम आदमी बन सकते हैं, एक प्रोफेशन में चाहे एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पॉलिटिशियन है, वो सब बन सकते हैं। लेकिन अगर हमको उससे ऊपर उठना है, हमको मैं से हम में आना है, तो स्पिरिचुअलिटी के अलावा कुछ भी नहीं है। हमको ज्ञान, एक तो किताबी ज्ञान होता है, एक प्रोफेशनल ज्ञान होता है, और उसके बाद जो प्रभु का ज्ञान है वो, और वो ही आपको नॉर्मल से एक एक्सीलेंट पर्सन बना सकता है, और जिसे हम कहते हैं कि एक्सीलेंस इज द की फॉर अ बेटर ह्यूमन बीइंग। साथियों, मैं खाली, समय बहुत ज्यादा नहीं है, मैं खाली ये कहना चाहूंगा कि हमारी संस्था 12,000 मेंबर हैं, देश के हर राज्य हर यूनियन टेरिटरी में हमारे मेंबर हैं, और हम 3E पे विश्वास करते हैं, एथिक्स एजुकेशन एंड एक्सीलेंस। और एथिक्स हम सब जानते हैं, एजुकेशन मैंने आपको बताया कि किताबी ज्ञान के अलावा जो सामाजिक ज्ञान है उसके अलावा अगर हम स्पिरिचुअल ज्ञान, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु से मिलते हैं, प्रभु से सीखते हैं, प्रभु को फॉलो करते हैं और प्रभु से ही इंस्पिरेशन पाते हैं, तो हम एक्सीलेंट बन जाते हैं। और इसलिए वो 3 E's हमारा जो संस्था का मोटो है, हमारे सिंबल में है, उसी को हम फॉलो करते हैं। और पिछले 1-2 सालों से हमारी संस्था ने एजुकेशन को रिलीजन से जोड़ दिया है। हमने पिछले साल अयोध्या में करी, इस साल की शुरुआत हमने भगवान जगन्नाथ के यहां करी, उसके बाद हम अयोध्या गए, उसके बाद महाकाल ओंकारेश्वर गए, अभी हम इतनी बढ़िया जगह, ऐसी जगह जहां पर आपको भगवान के अलावा, भगवान की वाणी के अलावा और स्पिरिचुअलिटी के अलावा कुछ नहीं मिल सकता, वहां पर है, जहां से मैं ये मानता हूं कि यहां से जो सीख मिलेगी वो आप अगर जीवन में आत्मसात कर लोगे तो एक दूसरे इंसान की परिकल्पना में आप आ जाओगे, मैं से हम में आ जाओगे और हम में विश्वास करते हैं। अगले महीने हम तिरुपति जा रहे हैं, उसके अगले महीने गोल्डन टेंपल अमृतसर जा रहे हैं, उसके अगले महीने हम रामेश्वरम जा रहे हैं, सितंबर में बांके बिहारी जी के पास वृंदावन जा रहे हैं, अक्टूबर में बौद्ध गया जा रहे हैं, बीच में हम शिरडी जा रहे हैं, नवंबर में देव दिवाली मनाने काशी विश्वनाथ बनारस जा रहे हैं, और ये सब दो दिन की कॉन्फ्रेंस जिसमें स्पिरिचुअल हमने इसलिए उसको जोड़ा साथ में कि जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट लॉज, ये तो हम रोज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और आर्ग्यू करते हैं, कराते हैं। बहुत सारे हमारे साथी बेंचेस में एलिवेट हुए हैं और मेरे को बहुत बड़ा गर्व है कि हमारे साथ हैं। लेकिन आज जो पहला हमारी स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में भागीदारी हुई है, ये एक जीवन का अद्भुत पल है। ऐसा पल हम कभी भूल नहीं सकते। यहां पर आकर मैंने देखा कि हम अपने आप को भूलकर जन की सेवा में लग जाते हैं। यहां के अस्पताल, यहां पे सेवा भाव, यहां पे जो मैंने देखा, मैं आज सुबह ही पहुंचा हूं, लेकिन सुबह से मैं आने के बाद से, स्नान करने के बाद से घूम रहा था, तो जो मैंने पाया, जो मैंने देखा, मैं कहता हूं कि अगर हम उन चीजों को फॉलो कर लें, अपने जीवन में आत्मसात कर लें। मैं वक्ता नहीं हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक ऐसा आदमी हूं। मैं जीएसटी पे आप कहेंगे दो घंटे बोल सकता हूं, इनकम टैक्स पे कहेंगे एक डेढ़ घंटा बोल सकता हूं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक बिल्कुल नई चीज है। मैं तो खुद एक शिष्य हूं, मैं खुद सीखने की कोशिश कर रहा हूं और यंग हूं अभी, तो मेरे को इस चीज में नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज पाई है, गुरु हर जगह और हर समय में चेंज होता रहता है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे गुरु अलग होते हैं, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो हमारे गुरु अलग होते हैं, लेकिन अब जब हमको और आगे बढ़ना है और चीजें करनी है तो हमको गुरु ज्ञान बहुत जरूरत है, और हमको वो ज्ञान और हमको स्पिरिचुअलिटी के साथ। आप अगर हमारे धर्म को देखेंगे, हमारे ज्ञान को देखेंगे, आज भगवत गीता, कभी भी मन में कंफ्यूजन हो भगवत गीता खोल लो, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप डिप्रेशन में हो, अपना रामायण पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी किसी काउंसलिंग की, किसी के पास जाने की। और ये ऐसा है, आज आप ज्ञान बटोरने के लिए, ज्ञान के लिए हमको ये मौका मिला है। मैं कहूंगा मेरे साथियों से, बहुत सारे हमारे पूरे देश से साथी आए हैं, ऐसा ज्ञान और ऐसी चीज कभी सोचा नहीं था, वो हमें प्राप्त हो रहा है, और मैं बहुत 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 धन्यवाद दूंगा ब्रह्मा कुमारी इसका। आपने हमारी संस्था को लायक समझा और आपने हमको बुलाया, साथ में लिया, और मैं यही कहूंगा कि आज हम बड़ी छोटी संख्या में हैं, लेकिन ये संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज जो हम लेकर जाएंगे वो स्प्रेड करेंगे, और बहुत साथी हमारे आपसे ज्ञान, एक नया चीज, एक नई स्पिरिचुअलिटी पाने की कोशिश करेंगे। हम अच्छे इंसान तो थे, लेकिन अब एक्सीलेंट की तरफ हमको बढ़ना है, और वो खाली स्पिरिचुअलिटी दिला सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, मैं ब्रह्मा कुमारी का दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, और मैं कहता हूं साथियों, अगर हमको आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, तो अब अपने को छोड़ के परमार्थ की सेवा करना चालू करें, यही स्पिरिचुअलिटी है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता पंकज खेड़ा जी, आपने संक्षिप्त में ही अपने दिल के उद्गार हमें सुनाए, और दिल से निकले हुए उद्गार हमारे दिल तक पहुंच गए, बहुत बहुत धन्यवाद। इग्निशियस ओब्रायन ने कहा है कि लॉ कैन नेवर बी डिवोर्स्ड फ्रॉम द आइडियल ऑफ परफेक्शन, फॉर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ इज द इटर्नल लॉ ऑफ गॉड, इन सेपरेशन फ्रॉम गॉड लॉ लूजेस इट्स वैल्यू फॉर मैन, बिकमिंग अ मियर एक्सटर्नल ऑर्डिनेंस विदाउट एनी रिलेशन टू हिज इनर लाइफ एंड डेस्टिनी। टू सी लॉ इन इट्स ट्रू पर्सपेक्टिव इट इज नेसेसरी टू नो वॉट अ मैन इज एंड लॉ इज मीन्ट टू बी फॉर हिज गुड। आगे बढ़ते हुए मैं अभी आमंत्रित करती हूँ हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस पच्चापुरे जी, पेट्रन जूरिस्ट विंग। आप कर्नाटका हाईकोर्ट के फॉर्मर जज रहे हैं, और आप कर्नाटका डायरेक्टर ऑफ कर्नाटका पुलिस फोर्स के रहे हैं। हमारी ये जुरिस्ट विंग का सौभाग्य है कि हमारे जजेस हाईकोर्ट जजेस हमारे पेट्रन हैं, अभी वाइस चेयरमैन भी हैं, तो उनके संरक्षण में हमारी विंग बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं और सदा इन लोगों के मार्गदर्शन में हम चलते रहेंगे। अनुरोध करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस A.S. पच्चापुरे जी अपनी शुभकामनाएं, और विशेष रूप से मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपके अनुभव युक्त बोल आप हमारे बीच में प्रस्तुत करें।
ऑनरेबल जस्टिस B.R. सारंगी द चीफ गेस्ट ऑफ द टुडेज फंक्शन, राजयोगिनी पुष्पा दीदी द चेयरपर्सन ऑफ द जुरिस्ट विंग, my affectionate brothers Justice Ishwaraya, Justice Rathi and Justice Das also, and sorry he is sitting on ahead, Rajyogini Lata Diji and all other dignitaries on the dais and off the dais. I think I am encroaching the time because the program was to be completed by 1 p.m. and it is now nearly 2 p.m. Anyhow, so far as the law and spirituality, the spiritual empowerment is concerned, generally I refer to the definition of law as defined by a common man. I have referred this definition on many occasions in the past, and I do feel relevant now also to refer to the same definition. When I was a student of law in the year 1975, a district judge had come to our college to address the students. And at that time, he defined as to what is law. We have heard the definitions of Salmon as to what is the law, but a common man, how he takes the law in his own sense has to be now looked into. He says, law is nothing but common sense. Law is nothing but common sense. Written in words, it makes no sense. Hence, we require the lawyers to argue with some sense, and it is ultimately for the judges to decide as to which lawyer has made the most sense. So this is what is the exact definition of law as considered by a common man in the society. So a judge must decide with some sense, that is most important. Means he must be a person who is senseful. He must have sense so that he can decide the thing in a proper way. So in this context, you see, I look into many of the judgments of the courts, you know, and many of the judges also who behave in the open courts. Just yesterday only I just observed a YouTube conversation in respect of a matter in the Supreme Court. The Supreme Court rejected the application, the petition of a person regarding the challenge to the inauguration of Parliament building by the Prime Minister. And it was rejected on the spot. But at that time, there was a controversy between a judge and the lawyer. The judge was angry. The lawyer was also angry. But anyhow, there was virtually I saw that, you see, a threat was given to the lawyer stating that, you see, in case if you bring such cases before the court, you will be sent inside. See, whether anger is a weakness or a strength. Whether judge must have the anger in his administration of duty as a judge, or it is not necessary. As we know, as a spiritualist personalities, anger is a thing, you see, which is a weakness of an individual, and it is not the strength of an individual. We can't be angry and then also be peaceful. What ultimately we fight for is here, the efforts that we make is that we must be peaceful for all the times in our lives so that the mind works in an appropriate way, in a balanced way, and we approach to a right judgment in the matter. So it is the duty of the advocate and also the duty of the judge to see that an appropriate and a reasonable and sensible judgment is rendered by the courts or with the assistance of the lawyer. But see, anger, in many occasions I have seen, many instances we have seen in different courts and different places, that the judge becomes angry. So, in case if a person is to render an excellent judgment, anger is not necessary, lust is not necessary, ego is not necessary, jealousy is not necessary, and if these things are there, then he can't be called as a judge also. But the thing is that, see, the judiciary has taken it as if that if I become an angry and something is that I am doing justice to a person. See, a judge must hear the matter in such a way, so in such a patient way, peaceful way, so that the advocate must feel that I have done my duty. But it should not be exceeded. See, an advocate should not continue to argument for hours together in a silly matter like the matter which was decided before the apex court in the last minute. I do agree that the judgment was right. The judgment was 100% right. But the way in which it was rendered, I think I feel that some introspection on the spiritual aspect is essential. You must have heard the judgment of the Supreme Court, where in section 377 of the Indian Penal Code was quashed. That is sodomy. And you know what is the offense of sodomy. You know also that section 497 of the IPC was quashed and adultery was permitted on the ground that the personal liberty of an individual or there should not be any equality before law and equal protection of the law was the principle which was applied in those cases wherein section 497 IPC was quashed. So, if we look into these judgments, many a times we feel that there is a spiritual, the approach in the spiritual administration, application or spiritual empowerment is less. And therefore, many a times I found that it is most essential to be empowered with the spiritual empowerment. So, I joined this institution in the 1993 and many a times I was also angry in the open court. But immediately I realized that, see, it is not my duty to be angry. I must hear him properly, given an opportunity. See, as a students of law, as a students of law in an administrative law, see, we have heard the principle, audi, alteram, partem. Hear the other side and then take a decision. But if we do not hear the other side and take a decision with an anger or something like that, I think that it would not be a spiritual empowerment. So, what I feel is that, you see, therefore, many a times, it is my experience that we take the law so complicated way that we really lose the sense and ultimately render a judgment, you see, without any sort of proper application or the spiritual approach. See, in the year 1993, when I joined this institution, I must thank many of the members of this institution who pushed me to this institution, and since then I am there up to for the last 30 years. I feel, you see, that I have done something in my life. That satisfaction, that honesty, that integrity. You see, honesty is most essential, integrity is most essential, and it does not cost anything. It just only costs the monthly salary of a judge, nothing more than that. If it is exceeds, then there is a dishonesty. If it is limited, then there is no question of dishonesty. So that was learned by me for the last 30 years. And see, I was able to have that satisfaction at the time of retirement that whatever the best it is possible for me has been done by me. And there is nothing for me to do hereafter. Because I am a retired man. But despite that fact, you know, you see, I have our own institution. Hiteshi is a charitable trust that we are administering justice through Dharma Nyaya Saptaha. We go to the villages, find out the litigants, advise them to get the matter settled, and you see that the litigation comes down and down. You see. So this is what exactly, because I can't take more than a 5 minutes time, still more. I will just go to see what sort of justice that we are getting in this country. See what happens generally, judges appreciate the advocates and the advocates appreciate the judges. But the other persons, what they speak about us is not known to anybody. Neither the advocate knows nor the judge knows. In any functions, you take any functions where the advocates and judges are available, advocate appreciates the judge. The judge is good man, he is an honest man, he is an appreciate man. There is so much of appreciation. And if the judge speaks, see, he says the advocates are very good people and see they are doing justice to the people and this fraternity is a legal fraternity. All those so many appreciations are being made. But you see, what an ordinary man looks at the advocates and the judges, that is to be seen. But unfortunately, you see, we never look into that aspect of the matter. This is the most unfortunate thing, you see, that's how the things happen. Therefore, we must leave the anger. Qualification for the judiciary should not be the law. In America, there is no essential qualification that he should be an advocate or a person having a law degree. In America, the appointment is on the basis of his honesty, integrity and performance in the society. Law is not a necessary degree yet. So therefore, the courts hereafter must impose a condition that he must be a person without anger, without any sort of lust, without any sort of ego. These should be the qualifications. This should be the qualification, not the law or practice as a law, because law could be interpreted in any way. And you see, anything could be done on the basis of the law. You know, you see, a case takes 20 years time for disposal. And see, I have decided many cases where they are pending for the last 30 years. As a district judge, I have decided a 30 years old case. There is only one instance I could say, an anecdote, it is not the actual thing that has happened. You see, there was a government, take for example, there was a government, it issued a notification. It issued a notification stating that all the sheep buffaloes in the state will be confined in the jail. The chief minister was like that, and he issued a notification that we will confine all the sheep buffaloes in a jail. And thereafter, hearing this notification, the sheep buffaloes went on fearing and started running towards the forest. They were saying that, see, the police will arrest us, they will put us into the jail, and therefore better to leave away the society and go to the forest. They were running, and at that time, the cow came and asked the sheep buffaloes, as to why you are running? The sheep buffaloes said, no, see, government has issued a notification to arrest us, and therefore we are running away to escape the arrest. Then you see, the cows also started running. Cows also started running that the police will arrest us also. Then you see, all the cows and sheep buffaloes were running, and at that time an elephant came in the way and asked the question as to why all of you are running. Then the sheep buffalo said, see, no, there is a government notification, the sheep buffaloes are being arrested and therefore we are running. Then you see, the elephant asked, you see, these are the cows. Why these cows are running? Then the cow says, see, whether I am a cow or a sheep buffalo has to be decided by the court after 20 years. Till then we will be in the jail. Till then we will be in the custody. See, these courts will take so much of time to decide as to which is white and which is black. So therefore they said, and hearing this, the elephant also start running away from the society. This is the example wherein the litigation is pending before the courts for years together, and still we say that we have the faith in the judiciary. It is only the advocates and judges, and it is not the common man in the society. I have heard many common people that they express their agony to such an extent. In court, in case if I go to the court of law, how many years it would take, I don't know. This is the reality in the society. With this reality in the society, we must understand what exactly that we have to do. The assistance to the litigants in such a way that they will feel satisfied that, see, they will get justice early. The judge must also feel that, yes, I must render the judgment at an earliest point of time, not choose the case and dispose of early. See, this all changes will have to occur, and that could be occurred only in case if we adopt the spirituality as a thing which is. So if we adopt this, if we discard the anger, if we discard the lust, if we discard the jealousy, with all desires, then see, we can be the right judges, and then can be a right administration of justice. See, therefore it is said that every judge must be like an ascetic, a seer. So that seerness comes only, that quality is only could be earned in case if we are spiritual and not otherwise. So this, with these few words, I must thank the organizers, the sisters, having given me an opportunity. I am extremely sorry that I have encroached upon the time. I thank everyone for the patient hearing. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस पच्चापुरे जी, आपने अपने अनुभव युक्त बोल हमारे बीच में प्रस्तुत किए, क्योंकि अनुभव की जो बातें हैं वो दिल में लगती है और हमें प्रेरणा भी मिलती है। अभी हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राजयोगी परम आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रजमोहन जी, आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ हैं। जब ये संस्था परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापन की थी, तो वो प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जी सरस्वती जी थे, उनके आप बहुत लाडले रहे हैं। आपने देश विदेश में बहुत से सेवाएं किए हैं, बहुत सेवा केंद्र खुले हैं। अभी वर्तमान में हमारा जो फाइनेंस लीगल अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट है, आप इसके इंचार्ज हैं। हमारी बाकी भी जो संस्था है, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत ये विंग्स आती हैं, आप उसके सेक्रेटरी हैं। और राजनीति प्रभाग है, जैसे हमारा जूरिस्ट विंग है वैसे पॉलिटिकल सर्विस विंग भी है, उसके आप चेयरपर्सन हैं। और आपके दिशा निर्देश के द्वारा ही संस्था का कारोबार चलता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे महान हस्तियों का हमें सानिध्य प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है और गाइडेंस प्राप्त है। अभी मैं आदरणीय भाई साहब से नम्र निवेदन करती हूँ कि आज आप अभी आपका अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें आदरणीय भाई साहब बीके ब्रिजमोहन भाई जी।
ओम शांति। आप सभी बहन भाई बहुत समय से सुन रहे हैं, आपको भूख भी लगी होगी, और भूख भोजन और आपके बीच में अभी मैं ही हूं, और शायद संदीप अग्रवाल जी हैं जो थैंक्स करेंगे, तो थोड़ा और सुनेंगे तो भूख और अच्छी लगेगी, भोजन और स्वाद लगेगा। मैं ये सोच रहा था, ये सब यहां जूरिस्ट बैठे हैं, तो क्या शॉर्ट में क्या बात करी जाए, तो मुझे ख्याल आया कि हम सब जज बन गए हैं, कोई बात नहीं। असली जज तो परमपिता परमात्मा है, और हम कहेंगे कि हम आपकी संतान है तो पिता की संतान तो वैसे ही होने चाहिए, तो हमारे जज बनने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। लेकिन गलती से हम दूसरों के जज बन गए। पिता कहता है अपने जज बनो तो अच्छा रहेगा, ठीक काम करोगे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, दूसरों के जज बन गए हैं, और इस कारण से जजमेंटल हो गए हैं। तो जो वास्तविकता है वो हमें, उससे हम थोड़े दूर हो गए। अब क्या किया जाए, तो इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हम अपने जज बन जाएं। अगर हम अपने जज बन जाएंगे तो हमें राइट और रॉन्ग अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। अभी हम दूसरों के ऊपर करते हैं, तो जितने एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कोई कह दे कि जाके ब्रह्मा कुमारी से स्पिरिचुअल डिस्कोर्स ले लो, तो कहते हैं ये तो पुरानी सदी की चीज है, हमें तो पता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो फिर हमें और ज्ञान लेने की क्या आवश्यकता है। वैसे भी कहा जाता है नॉलेज इज टू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, तो हम नॉलेजेबल भी बहुत हैं। क्वेश्चन ये है कि मुझे पता है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, फिर भी मैं क्या कहता हूं। एक क्लासिक स्टेटमेंट है जो हम देते हैं अच्छी चीज के लिए कि मैं ये करना तो चाहता हूं पर मैं कर नहीं पाता। किसी को कह दो सुबह 3 बजे मेडिटेशन में आ जाओ, कहेंगे बड़ी अच्छी चीज है, परंतु मैं ये करना तो चाहता हूं मैं कर नहीं पाता। और कहो गुस्सा छोड़ दो तो कहेंगे मैं छोड़ना तो चाहता हूं पर छूटता नहीं। अब उस नॉलेज का क्या फायदा हुआ, हमको पता भी है कि गुस्सा खराब चीज है, हमको छोड़ना चाहिए, और मेडिटेशन अच्छी चीज है, हमको करनी चाहिए, पर हम हर चीज के लिए अच्छी चीज के लिए हमें ज्ञान है, हम किसी से ज्ञान नहीं लेना चाहते अच्छी चीज क्या होती है, लेकिन जब करने में आता है तो इसको कहा जाता है इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस, अर्थात हम आत्मा कमजोर हो गई है, हमारा मनोबल घट गया है, हम जानते हैं ये होना करना चाहिए कर नहीं पाते। और दुर्योधन का वो प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि मैं जानता हूं अच्छा क्या है पर मेरी रुचि नहीं है अच्छा करने में, अब मैं क्या करूं। इसलिए सोचने की बात है कि नॉलेज से ऊपर भी एक चीज होती है जिसका नाम है विजडम। सरस्वती जी को गॉडेस ऑफ विजडम कहा गया है, गॉडेज ऑफ नॉलेज नहीं कहा गया। विजडम जो होती है वो एक साइडेड ही होती है, केवल अच्छे को जानना, उसको बुरे को जानने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए हम तो ब्रह्मा कुमारी के स्टूडेंट हैं बहुत पुराने, तो हमने सोचा थोड़े से टाइम में आपसे क्या बात करें। तो बात यही है कि गॉडली विजडम कहती है कि परमात्मा ने हमें एक बेसिक प्रिंसिपल जीवन में इनहेरेंट धारण करवा के भेजा था, और वो प्रिंसिपल ये है नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इट्सेल्फ। आप नोट कर लीजिए नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इट्सेल्फ। ये जो कुर्सी पर मैं बैठा हूं कुर्सी अपने लिए नहीं बनी है, मेरे लिए किसी बैठने वाले के लिए बनी है। ये जो आवाज बुलंद कर रहा है ये अपने लिए नहीं बना, ये किसी की आवाज बुलंद कर रहा है। ये जो बल्ब लाइट दे रहा है ये अपने को नहीं दे रहा है, ये दूसरे को दे रहा है। यू ट्राई इट ऑन एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड, आप पाएंगे सूर्य रोशनी दे रहा है लेकिन अपने को नहीं दे रहा है। और हमारे भारत में तो माना जाता है कि नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते, That says it precisely। अच्छा अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दूसरों को जिसके लिए हम एग्जिस्ट करते हैं उसको देना चाहिए। तो हमें भगवान ने देवता बना के भेजा था, देवता का सिंपल भाषा में यही अर्थ होता है देने वाला, ठीक है जी। और हम क्या बन गए हैं, अब उसको अपोजिट कर लीजिए, क्योंकि हम दूसरों को जज करते रहे हैं तो हम बन गए लेवता। और हम ये समझते हैं कि मैं दुनिया के लिए नहीं हूं बल्कि द होल वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर मी, मेरे लिए सब कुछ बना हुआ है। तो इस कारण से हम धोखा खाते हैं और जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। तो इसलिए बेसिक लॉ ये है कि हम देवता बन जाएं जो हम थे। तो देवता बनने से आप भरपूर हो जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या, हम दूसरों को देते जाए तो हमारा घटेगा या बढ़ेगा। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, हमें यही सिखाया जाता था, ऑल दैट कम्स इन इज गेन, ऑल दैट गोज आउट इज लॉस, एक प्रिंसिपल अकाउंटेंसी का। लेकिन हमने यहां आके सीखा कि नहीं, उल्टा है, आप किसी को सम्मान देंगे आपको सम्मान मिलेगा, कहा ही जाता है इज्जत दो इज्जत लो। अगर कोई खड़ा हो जाए कि पहले मुझे ये इज्जत दे फिर तो नहीं होता। अच्छा, देने वाले हमेशा बादशाह है, श्रेष्ठ है, सॉवरिन है। अगर किसी को आपने 50 रुपए भी देने हो तो आपका हाथ ऊपर रहेगा, ले भाई, और 5 लाख भी लेने हो तो आपका हाथ नीचे हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग। इसलिए आप यहां आए हैं तो हम बेसिक बात आपको ये बतानी चाहते हैं कि हमें टू गिव अप्रोच इन लाइफ रख ले। हम ये नहीं कह रहे आप कंबल बांट दो, आप पैसे दे दो, बिल्कुल जो फ्री चीज है, जो आप जितनी देनी चाहें दे सकते हैं, वो क्या है, शुभ भावना, गुड विशेष दे दो। हमने अपने घर के बाहर एक स्वस्तिका बनाई होती है, लिखा होता है शुभम लाभम, लेकिन लाभम जरा लोभम हो गया, थोड़ा ओ लग गया उसके साथ, तो नतीजा क्या है कि हम दे नहीं पाते। तो अगर आप सम्मान देंगे आपको सम्मान मिलेगा। और देवताओं की मूर्तियां, अभी तो देवता शरीर में नहीं है, वो तो सतयुग में थे, उनकी मूर्तियों के आगे भी आप देखेंगे गरीब से गरीब भी कुछ दे जाता है, तो देने वाले को मिलता है क्योंकि उनकी मूर्ति खाली आशीर्वाद देती है। तो बेसिक बात यह, हम क्या दे सकते हैं, तो जो हमें अंदर होगा वो हम देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जिसको कहा जाता है शुभ भावना और शुभ कामना, हर एक को, वो भी हर एक को देना है विदाउट एक्सेप्शन। ऐसे नहीं हम कह सकते हम सबको शुभ भावना देंगे पर मेरी मदर इन लॉ को नहीं देंगे, वो नहीं चलेगा, विदाउट एक्सेप्शन। उसका मतलब क्या हुआ कि आपने जिसको हम पहले कहते आए हैं भक्ति में, दो तुझको कांटा बोए उसको बो तू फूल, है ना, क्यों, लॉजिक बड़ा इजी है, तुझको फूल के फूल है उसको है तरसूल। तो ये हम बोल तो देते हैं परंतु करते नहीं है। अगर हम केवल और केवल एक अपने मन में धारणा कर लें, जैसे कहा जाता है सावन के अंधे को हरा दिखता है क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी जब जाती जब हरा ही हरा था। तो अगर कोई राजस्थान में कहा जाता है कि एक बारी बहुत बारिश नहीं हुई, बिल्कुल कहत पड़ गया, अब फॉडर तो रहा नहीं गाय भैंस के लिए, तो सूखा फॉडर रहा, तो एक गाय के आगे उन्होंने सूखा चारा रखा, वो खाए ना, उसको हरी ऐनक लगा दी, वो खा गई। तो कहने का भाव क्या हुआ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम इस दुनिया में अच्छा ही अच्छा देखें, अच्छा ही अच्छा हमारे अंदर आएगा, अच्छा ही अच्छा करें तो दुनिया अच्छी हो जाएगी और सब खुश हो जाएंगे। अब मैं आपको, क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट टू कीप यू वेटिंग फॉर योर ब्रह्मा भोजन, एक कहानी सुना के पूरी कर देता हूं, क्योंकि कहानियां आजकल जज साहब ने भी सुनाई अच्छी अच्छी, मुझे मच्छर वाली कहानी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तो कहते हैं एक बादशाह थे, बहुत धन था उनके पास। एक महात्मा जी ने कहा, अब अभी 50 साल के होने वाले हैं, मरने के बाद किसने देखा है, तो अपने जीवन काल में अपना धन अपनी प्रजा को बांट दीजिए। उसकी समझ में आ गई बात, तो बादशाह ने डिक्लेयर कर दिया कि रोज सुबह 10 से 1 तक प्रजा आएगी, और उसने अपने धन की थैलियां बनवा ली और एक एक थैली सबको दी जाएगी। तो लंबी लाइन लग गई। उस लंबी लाइन के एंड में एक बेगर था, गरीब, जिसको भिखारी कहते हैं। तो वो बहुत समय के बाद उसकी टर्न आई। जब उसकी टर्न आई तो उसने क्या किया, थैली नहीं ली, टर्न छोड़कर फिर लाइन में लग गया, लंबी लाइन में। 2-3 बार किया तो मीडिया वालों ने उसके फोटो छापने शुरू कर दिए कि ऐसा फकीर है, देखो घंटों लाइन में खड़ा रहता है, जब उसकी टर्न आती है तो फिर लाइन में लग जाता है। अब बादशाह को ईर्ष्या हो गई कि धन मैं बांट रहा हूं, मशहूरी इसकी हो रही है। तो बादशाह सलामत ने उसको बुलाया, आओ भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है, तुम दो थैली ले लो, चार ले लो, जाओ और यहां से रफू चक्कर हो जाओ। उसने कहा जहां पना ऐसी बात नहीं है। तो कहा क्या बात है? कहता है कि मैं अब दूर खड़ा था, मैं देखता था, जब आप थैली देते हैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, जब आप थैली देते हैं आपको मुस्कुराहट आती है, तो मैंने ये समझ लिया कि देने में खुशी है, तो मेरे पास तो कुछ देने को है नहीं, मैं अपनी टर्न दे देता हूं, मुझे खुशी मिल जाती है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। आपने किस्से, कहानियां, जोक्स के जरिए बहुत सुंदर हमें ज्ञान सुनाया। ये भाई साहब की विशेषता है, हमारे जो भी क्लासेस आदि भी होते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें बताते हैं, हंसाते भी हैं, लेकिन उसमें बहुत गहरा ज्ञान का कोई राज छिपा होता है। आप समझ सकते हैं भाई साहब इतना समय से यहाँ बैठे हैं, भाई साहब की उम्र 87+ है, तो भी आज भी अथक होकर भाई साहब सारा दिन सेवाएं करते हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे भाई साहब सेवाएं करते हैं, सॉरी 90+ है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 90+ है भाई साहब की उम्र, लेकिन अभी भी 24 घंटे में से 18 घंटे सेवा करते हैं। ये केवल और केवल आध्यात्मिक शक्ति का ही परिणाम है। जितना मेडिटेशन करते हैं उतनी आत्मा में बल आता है, और आत्मा में जब बल आता है तो हम शरीर को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, इसका वो ज्वलंत उदाहरण है। अभी ये कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है, वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए मैं वक्ता संदीप भाई को बुलाती हूँ। उसके पहले हमारे जो मेहमान है जी, भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं।
मुझे आपकी भूख का इतना ख्याल रहा कि मैं मेन टॉपिक ही भूल गया। तो जब बहन जी ने कहा आध्यात्मिक सशक्ति, तो मुझे याद आया कि विषय तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण है, तो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण कौन कर सकता है? ये शब्द तो बड़ा कॉमन है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण बहुत लोग कर रहे हैं। अभी 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योग आएगा, वो भी शायद आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए ही है, कई वर्ष से तो आ रहा है। जितने भी आध्यात्मिक सशक्तिकरण आज तक हो रहा है, क्या उससे आध्यात्मिक सशक्तिकरण हुआ? ये तो एक शब्द है, इसलिए हु इज द सोर्स ऑफ आध्यात्मिक सशक्तिकरण। जैसे हर चीज का सोर्स होता है, गर्मी और रोशनी का सोर्स सूर्य है, जल का सोर्स ओशन है, तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण का सोर्स गॉड ऑलमाइटी है, क्योंकि उन्होंने ही हमें शक्ति दी थी तो हम देवता बने थे। मैंने कह दिया हम देवता बन जाए, मेरे कहने से हम बन जाएंगे क्या? नहीं। इसलिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण आवश्यक है, ये सब जानते हैं, लेकिन उसका सोर्स परमात्मा है। इसलिए ये ब्रह्मा कुमारी में हम सब अपनी ताकत से हम चेंज होने की कोशिश नहीं करते। अगर अपनी ताकत से बेटर हो सकते तो हम पहले नीचे ही क्यों आते? हमारी ताकत तो घट चुकी है। मैंने आपको बताया लेवता बने रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने रहे हैं, तो लेवता हो गए थे। इसलिए हमें ऑलमाइटी गॉड, उनसे शक्ति लेना। तो परमात्मा को मन से याद करेंगे, जैसे गीता में कहा हुआ है, उनसे हमें मनोबल मिलेगा, वो उससे हमारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण होगा। उसको आप मेडिटेशन कह सकते हैं, परमात्मा की स्नेह युक्त याद कह सकते हैं, या उससे बुद्धि योग कह सकते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अभी आज का इस कार्यक्रम का ये अंतिम पड़ाव है, उसके पहले मैं आज जो स्टेज पर हमारे मेहमान आए हैं उनका सम्मान करने के लिए आदरणीय भाई साहब एवं दीदी पुष्पा दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि मेहमानों का स्वागत करें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डॉक्टर डी आर सडंगी जी, जज हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कटक। मैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी पी दास जी को भी बुलाना चाहूंगी, वो स्टेज पर आए, आपका भी सम्मान करेंगे। नाथपाल भाई लेके आइए जी का। आदरणीय भ्राता पंकज घिया जी, भ्राता पंकज भिया जी का सम्मान हो गया है। भ्राता संदीप अग्रवाल जी, भ्राता संदीप अग्रवाल चेयरमैन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स सेंट्रल जोन, आपका भी सम्मान हो रहा है शॉल एवं सौगात द्वारा। अभी वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए भ्राता संदीप अग्रवाल जी हमारे बीच पधार रहे हैं। भ्राता संदीप अग्रवाल कुछ पिछले टैक्स प्रैक्टिशनर है और पिछले 6-7 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। सबसे कम उम्र में चेयरमैन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर बनने वाले चेयरमैन हैं और आप बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं और काफी जब से चेयरमैन बने हैं आपने जनवरी महीने से अभी तक 42 कॉन्फ्रेंसेस अरेंज की है, मैनेज की है और अभी भी यहाँ पे भी आश्रम से जुड़ने के कारण उनको बहुत उमंग उत्साह था कि हमारे जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं मेरे कनेक्शन के हैं उन लोगों को सभी को बाबा के घर लाना है, उनको बाबा का ज्ञान देना है, तो बड़े उमंग उत्साह से उन्होंने यहाँ लाया है। तो ऐसे हमारे विशेष भ्राता संदीप अग्रवाल जी से अनुरोध है आप वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करेंगे।
धन्यवाद दीदी। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा बाबा का जिन्होंने मुझे मौका दिया। मुझे ध्यान है कि जैसे मैं चेयरमैन बना था उस तब भी सबसे पहला मंच जो मैंने साझा किया था वो बाबा का ही जूरिस्ट विंग की कॉन्फ्रेंस गुड़गांव में थी, उसमें मैंने वोट ऑफ थैंक्स दिया था। और ये बाबा की डबल लाइट का ही कमाल है कि मैं आज इन ऊंचाइयों पर पहुंच पाया, इतनी कम उम्र में इतना आगे बढ़ पाया और ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले थैंक्स देना चाहूंगा ब्रजमोहन भाई जी का जो अपने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्म कुमारी हैं जो अपने व्यस्तम समय में से यहां आए और हमको ज्ञान प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी आर सारंगी साहब का जो कर्नाटक कटक उड़ीसा से इतनी दूर से हमारे बीच में पधारे, जो हमारे कार्यक्रमों में लगातार हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजयोगिनी बीके पुष्पा दीदी का जो चेयरपर्सन है जूरिस्ट विंग की, जिनके सहयोग से जिनके मार्गदर्शन में ये हम सब जूरिस्ट मिलकर जूरिस्ट इस कॉन्फ्रेंस का लाभ ले पा रहे हैं और उन्हीं के सहयोग से हमें भी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर पहली बार इस किसी संस्था ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर कोई कार्यक्रम करना चाहता। मैं इसके साथ साथ धन्यवाद दूंगा लता दीदी का जिन्होंने एक बड़ी बहन की तरह हमेशा पालना की है। मैं कहूंगा कि आज मैं आपके सामने जो खड़ा हूं ये उनकी पालना का कमाल है, उनके स्नेह और प्यार का कमाल है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वाइस चेयरमैन बी डी राठी जी का, ऑनरेबल जस्टिस बी डी राठी जी का, उनके उद्गार हमने सुने आप पधारे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर के नेशनल प्रेसिडेंट पंकज घिया जी का जो आप उनके भाषण से समझोगे सुपर एनर्जेटिक पर्सन है और ये 65th प्रोग्राम है उनका जो यहां हमारे बाबा के घर में हो रहा है, उन्होंने जनवरी में ही पदभार लिया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जस्टिस ए एस पचपुरी जी का, जस्टिस वी ऐश्वर्या जी का, इसके अलावा मैं अन्य जो भी डायस में विराजमान उनका धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप यहां पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। अभी चूंकि लंच का समय हो गया, थोड़ी भीड़ कमी, पर मेरा आपसे सिर्फ लास्ट में यही निवेदन है आप सभी से कि जितने भी सेशंस होंगे, आप लोग चाहे कहीं से भी आप लोग पधारे हैं, उन सारे सेशंस को आप अटेंड करें। सेशंस की डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या जो ब्रोशर आपको दिया गया है उसमें है। एक एक सेशन इम्पॉर्टेंट है, एक एक सेशन में आपको डिफरेंट चीजें जो आपने अपने लौकिक जीवन में, जिस आपने लौकिक जीवन में अपने जनरल लाइफ में अभी तक उन चीजों को सुना नहीं होगा, जाना नहीं होगा। हम आत्मशुद्धि स्पिरिचुअलिटी के लिए यहां आए हैं, तो तीन दिन उन सब का आनंद लीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ज्ञान सरोवर कैंपस के सारे लोगों का जो इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने में हमारी मदद कर रहे हैं, और उन सेवाधारियों का जो आपके हम तो यहां डेलीगेट हैं और वो सेवाधारी बन के आए हैं। कोई किचन में सेवा दे रहे हैं, कोई यहां डाइस पे सेवा दे रहे हैं, कोई कैमरे में सेवा दे रहे हैं, कोई आपके ट्रांसपोर्ट में सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे सेवाधारी जो निस्वार्थ भाव से आए हुए हैं, और ये आप ही मानेंगे कि जो सुबह 4 बजे उठ के किचन में बैठ के, अगर आपका सुबह आप 3 बजे उठ के सुबह 3 बजे अगर आप किचन की तरफ भंडारे की तरफ जाएंगे तो वहां आपको बहने सब्जियां काटती हुई दिखेंगी। भोजन जो इतना अच्छा भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना मीठा भोजन, प्यारे बाबा का मीठा प्रसाद हमको लेने को मिल, खाने को मिल रहा है, वो उन बहनों के कारण है। तो पुनः आप सभी का धन्यवाद। आप सभी टूरिस्ट पधारे, इस तरह से हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
हमको सभी को धन्यवाद देने वाले हमारे संदीप भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी मेहनत की। वहां भी जाते थे, अपनी कॉन्फ्रेंसेस करते थे और बीच बीच में यहां भी आते थे कि ये करना है, कॉन्फ्रेंस में वो लाना है। तो बहुत मेहनत करी है और अपने इंस्टीट्यूशन के, चार्टर्ड टैक्स प्रैक्टिशनर इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे भाई बहनों को यहाँ पे सम्मिलित किया है। तो उनका और उनकी सारी टीम जो भी यहाँ मौजूद है, सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे बीच में आज ही अभी भीलवाड़ा के एक कमर्शियल कोर्ट के वरुण तलवार जज साहब आए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है, खड़े हो जाए। हाँ सब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम सब 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे परमात्मा की याद में, और उस याद का गीत हमारे बीच में श्रद्धा बहन ही प्रस्तुत करेगी। श्रद्धा बहन,
अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु को ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा से शांति में भरे